आज का रात की क्लास है 3/10/1967। जन्म जन्मांतर पदम पति बनने के लिए, भविष्य के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, है? श्रीमत माने श्रेष्ठ की मत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस दुनिया में फिर श्रेष्ठ किसे कहें? श्रेष्ठ की मत पर चल रहे हैं या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चल रहे हैं? है किसकी मत पर चल रहे हैं? क्योंकि हाँ, इस संसार में श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। श्रेष्ठ तो तब कहें जब मनसा वाचा कर्मणा भ्रष्ट इंद्रियों की याद भी ना आए। कब कहें? हाँ, तो बताया कि आत्म की स्टेज बनेगी तब कहेंगे किसी की श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ बुद्धि बनी है। तो क्या 24 घंटे की आत्मिक स्थिति बन जाएगी जल्दी? है बन जाएगी है? अगर ये ज्ञान मिल जाए कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, प्रकृति के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा है, तो मालूम हो जाने से ही क्या आत्मिक स्थिति में कोई टिक जाएगा? क्योंकि 63 जन्म की तो आदत पड़ी हुई है, पहले अपनी देह याद आती है, फिर संबंधियों की, जिन संबंधियों से इंद्रियों का जो योग जोड़ा है तो उनकी याद आती है। जब पूछे तब बताओ ना। तो 63 जन्म की आदत एकदम छूटेगी क्या? देह को याद करने की आदत पड़ी हुई है। तो बताया कि प्रैक्टिस करनी है, हैं? और ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? हैं? काम धंधा करते हैं तो बुद्धि काम धंधे में जाती है। हाँ, खुश हो रहा? हाँ, और बैठ के याद करते हैं तो बाबा कहते हैं कि बैठ के याद नहीं करना है, है? काम करते चलते फिरते याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर करना ही है बैठ के याद तो अमृत वेला को कोई काम धंधा नहीं होता है, और उस समय वायुमंडल भी अच्छा होता है। तो अमृत वेला बैठ करके, वो भी ऐसे नहीं कि अमृत वेला 12-1 बजे के बाद अमृत वेला होता है, क्योंकि विदेशियों के अनुसार तो जो पश्चिमी देश है ना, तो वहां तो सूरज 6 बजे उगता है। यहाँ के 12 बजेंगे तो वहां है अमेरिका में सूरज उगेगा, तो उनके लिए तो उनकी बुद्धि तीखी है, तीखी बुद्धि से उन्होंने ये पक्का कर लिया कि सूरज उगना कब शुरू होता है। क्या सवेरे को उगना शुरू होता है? नहीं, सूरज का उगना तो रात्रि के 12 बजे से ही उगना शुरू हो जाता है, और फिर रात्रि के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सूर्य ऊपर की ओर आता है या पृथ्वी के उस पार ही बना रहता है। हाँ, ऊपर की ओर आना शुरू होता है, तो कहेंगे कि वो ही अमृत वेला हुआ। तो बताया कि बहुत में बहुत करके कोई बहुत दम लगाए, प्रैक्टिस करे, तो 12-1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा होता है, क्योंकि जो भूत प्रेतानी आत्माएं है ना, जो अकाले मौत से शरीर छोड़ती हैं, वो मंडराती रहती है, और वो ज्यादातर विकारी आत्मा ही होती है, जो ज्यादा पाप कर्म करती है, कामी होती हैं, क्रोधी होती हैं, ज्यादातर लोभी होती है, तो वो आत्माएं अपनी हविष पूरी करने के लिए, पूर्व जन्म में उनकी हविष पूरी नहीं हुई और वो हविष में ही शरीर छोड़ दिया, तो वो हविष पूरी करने के लिए कोई न कोई हमें प्रवेश करते रहते हैं। इनके साथ उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा, उन्हीं में प्रवेश करते हैं, तो फिर जिनमें प्रवेश करेंगे उनकी बुद्धि खराब कर देते हैं। तो बताया कि 12-1 बजे के बाद उन आत्माओं का थोड़ा प्रेशर कम होता है, तो उस समय अमृत वेला कहा जाएगा, सूर्योदय से पहले पहले ही अमृत वेला कहा जाता है, और ये तो हद का अमृत वेला है। बेहद का भी अमृत वेला होगा ना, बेहद का अमृत वेला तब कहेंगे जब वो निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्योति बिंदु शिव, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए वो सदा त्रिकालदर्शी है, कभी भी उसका ज्ञान खूटता नहीं है, तो वो इस सृष्टि पर तब ही आता है जब इस सृष्टि पर बेहद का अंधेरा बढ़े है? या हद का अंधेरा बढ़े है? बेहद का इस सृष्टि पर अज्ञान अंधकार छा जाता है, तब वो इस सृष्टि पर आता है, तो उसे ही कहेंगे ना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अब वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ फिर आकर के पुरुषार्थ करने का, कराने का तरीका तो बताता है ना, जिसे कहते हैं गीता ज्ञान, ज्ञान का गीत है उसका। अब जो भी कवि होते हैं उनके गीत को सब कोई गहराई से समझ पाता है क्या? हाँ, तो बताया कि जब मैं आता हूं तो जैसे भूत प्रेतों का कोई मुकर्रर अपना नंबर वार शरीर होता है, तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप का भी षष्टि रूपी रंगमंच पर कोई अपना मुकर्रर रथ होता है जिसमें वो परमानेंट प्रवेश करता है। और उसके अलावा और भी हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए हैं। 4 मुख जो हैं वो 4 दिशाओं की तरफ हैं और 1 मुख ऊपर की ओर। लेकिन जिस जो मुख ऊपर की ओर है उसे वो पहचानता होगा क्या? सुप्रीम सोल शिव है, जरूर पहचानता होगा। ऊपर की ओर का मतलब ये है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई तो आत्मा है जो सुप्रीम सोल बाप के आने तक है, उसकी बुद्धि कुछ न कुछ औरों के मुकाबले ज्यादा उस एक में ही लगी रहती है जिसको धर्म पिताएं भी समझते हैं कि वो सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है, अर्श का रहने वाला है, परमधाम वासी है, आत्माओं के लोक का वासी है। तो गुरु नानक ने कहा किधर इशारा किया? ऊपर की ओर इशारा किया। तो वो इस सृष्टि पर आता है, माने ऊपर से नीचे आता है, माने अवतार लेता है। तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है, और अपना शरीर होता तो जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता, तो वो फिर इस सृष्टि पर आकर के कैसे गीत ज्ञान का गीत सुनाएगा? है तो उसे तो नंबर वार शरीरों का आधार लेना पड़े ना। तो जो शास्त्रों में गाया हुआ है, चित्र बने हुए हैं, चित्रकारों ने पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा आदि की गुफाओं में चित्र बनाए थे और उन चित्रों की व्याख्या शास्त्रकारों ने ऋषि मुनियों ने की, तो उनको साक्षात्कार हुए। उन साक्षात्कारों के आधार पर उन्होंने ये जाना कि जिन शरीर रूपी रथों में खास करके वो सुप्रीम सोल शिव बाप प्रवेश करते हैं वो 5 है। तो उन्होंने 5 ब्रह्मा के मुख इकट्ठे कर दिए। अब ये नहीं उनकी बुद्धि में आया कि 5 मुख का भी कोई आदमी होता होगा क्या? हो सकता है उन्होंने साक्षात्कार में ही 5 मुख वाला देखा हो ब्रह्मा, तो 5 मुख वाला बना ही दिया। फिर उनकी बुद्धि में आया कि 5 तो सच्चे नहीं हो सकते। ऋषि मुनियों की बुद्धि में आया नंबर वाली सच्चे होंगे ना, तो सबसे सच्चा कौन सा मुख होगा? तो इतना तो जान लिया कि जिसका मुख ऊपर की ओर है वो जरूर सच्चा होगा, है ना। कोई का पूरब की ओर है, पूरब से सूरज निकलता है ना, तो ज्ञान सूर्य भी किधर से निकलता होगा, पूर्वी देशों से आता होगा ना। हा? जैसे वो जापान के लोग है ना, तो क्या समझते हैं, जापान के लोगों का पक्की धारणा ये है कि हम सूर्यवंशी हैं। क्यों? कि जो स्थूल सूर्य उगता है ना, तो सबसे पहले वो किरण है जो उत्तर पूर्व से आती है ना, वहां से सूरज पहले किरण है कहां डालता है, है? पूर्वी देश जो कहे जाते हैं उनमें एशिया का पूर्वी हिस्सा है ना, तो उसमें पहले किरण किनके ऊपर, कौन से देश के ऊपर, जापान देशवासियों के ऊपर पड़ती है। तो वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ था, भारत के शास्त्रों में और विदेशी शास्त्रकारों ने भी यहां आकर के शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उनकी बुद्धि में भी यही बैठा कि हाँ कोई जो स्थूल सूर्य है हो सकता है वही भगवान का रूप। तो जापानियों की बुद्धि में भी बैठ गया कि हाँ हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि हम ही तो पहले सूर्यवंशी हैं ना। तो वास्तव में ऐसी बात नहीं है, वो स्थूल सूर्य की बात है। ये सूरज है, ये चांद, ये सितारे, ये पृथ्वी, ये सागर, ये पहाड़, ये नदियां, ये पोखरे तालाब, ये तो सब जड़ हैं। जड़ में कोई चैतन्य आत्मा होती है क्या? हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच के चैतन्य आत्मा रूपी सितारे जरूर है, है? जो भी मनुष्य मात्र है ना, उनमें वो चैतन्य आत्मा जरूर काम करती है, और वो चैतन्य आत्मा की रोशनी आंखों में से निकलती है। जब तक वो ज्योति आत्मा की मनुष्य में है तब तक वो जीवित है, प्राणी है, माने प्राण वायु लेता है छोड़ता है, और जब वो आत्मा निकल जाती है तो प्राण वायु निकल जाती है, कहते हैं मर गए, जड़ शरीर रहेंगे। तो बताया कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही कोई आत्माएं हैं जो नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं। कहां से आकर? हा, उसी लोक से आती हैं जहां से परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर हेवन बनाने के लिए, क्योंकि यही एक सृष्टि पृथ्वी ऐसी है जहां जीव जंतु और मनुष्य रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि और जो जड़ नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनमें कोई जीव जंतु रहते हैं, वो तो जड़ है ना, है? हो, वास्तव में ये जीवन जो है वो कहां है? इस पृथ्वी पर है, धरणी पर है। तो धरणी भी कोई चैतन्य होगी ना, है? वो धरणी जिसमें ये क्या कहते हैं, कौन सा अंश ज्यादा है? मिट्टी, है ना? तो कहेंगे कि मिट्टी में, धरणी में वो मिट्टी का अंश उठा लो मुट्ठी में, तो क्या उसमें आकाश है या नहीं है? वैक्यूम है, उस मिट्टी के अंदर वैक्यूम भी है कुछ न कुछ। जल है या नहीं है? जल भी है कुछ न कुछ, नमी जरूर रहती है। और आग, अग्नि भी है, हवा, हवा भी है। तो वो पांचों जड़ तत्व जो हैं वो पृथ्वी में और पृथ्वी की जो मिट्टी है उसमें मौजूद रहते हैं, कण कण में, तो कहने का मतलब है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी है कोई पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी होगी या चैतन्य की नहीं होगी, क्योंकि धरती के सितारे हैं ये, धरती का चंद्रमा है, कोई धरती का सूरज भी होगा और धरती का बड़े से बड़ा पहाड़ भी होगा। तो ऋषियों मुनियों की बुद्धि में ये बात नहीं आई कि जो हमने सूर्य की इतनी महिमा की है वेदों में, क्योंकि पुराने तो वेद ही हुए ना, तो वो सूर्य कोई हमारी तरह चैतन्य होगा, उन्होंने समझा वो ही सूर्य होगा जो चैतन्य बन के आता होगा, तो ये तो बात पक्की हो गई कि ये ग्रह उपग्रह नक्षत्र पृथ्वी सितारे और ये चांद ये सब जो रोशनी ले रहे हैं किससे ले रहे हैं, वो जो जड़ रोशनी है किससे ले रहे हैं, सूर्य से ले रहे हैं ना। तो इस सृष्टि पर भी जो ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई जरूर चैतन्य मनुष्य होगा, क्या जिस चैतन्य मनुष्य में वो सुप्रीम सोल जो ओरिजिनल सूर्य है, क्या सूर्य का बच्चा क्या होगा, सूर्य का बच्चा सूर्य जैसा ही तो होगा ना, फिर उसका बच्चा जो होगा वो थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब ये है कि वो ऊंच के ऊंच आत्मा जो है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उस आत्मा रूपी सितारे को पकड़ता है जिसके आसपास सारे सितारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। बताओ कौन सा सितारा है, नहीं मालूम, ध्रुव तारा। हाँ, तो जो ध्रुव तारा है वो ऋषि मुनि ने भी जान लिया है कि ध्रुव तारे के आसपास सारी दुनिया के सितारे हैं, सारे ही जो सितारे ग्रह नक्षत्र हैं वो सब उसके आसपास घूमते हैं। तो आत्मा रूपी सितारों में सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाला जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है, ये षष्ठी रूपी रंगमंच का वसुधैव कुटुंबकम कभी तो बना होगा ना, तो क्योंकि कोई परिवार होता है ना, तो परिवार में जितने भी भांति हैं छोटे बड़े है? वो सब की बुद्धि किसके आसपास घूमती है, पिता के आसपास घूमती है, तो मुखिया के आसपास घूमती है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसके आसपास सारे चैतन्य आत्मा रूपी सितारे घूमते हैं वो ही ध्रुव तारा हो गया। ध्रुव तारा का मतलब है स्थिर रहने वाला, वो अपनी जगह से टलता नहीं है, क्या और जो सितारे हैं वो तो जगह बदलते हैं, बदलते ही नहीं, हाँ वो एक ही सितारा है। जब भी देखेंगे जड़ सितारों में तो उसको सवेरे सवेरे 4 बजे के आसपास वो दिखाई देता है, क्या तो अरे सूरज तो 12 बजे से निकलना शुरू हो जाता है जड़ सूर्य, तो वो 4 बजे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हाँ अमृत वेला जो पक्का पक्का अमृत वेला है ना, वो वास्तव में 4 बजे के आसपास ही होता है। क्यों? जब अच्छी याद आए तो पक्का अमृत वेला, और 12-1 बजे उठे तो है? पहले से तो प्रैक्टिस है नहीं, तो कैसी याद आएगी? हाँ झोंका जाकी है, हाँ ऐसी याद आती है, तो उसको पक्का अमृत वेला नहीं है ना। और जो 4 बजे से अमृत वेला है, वो सूर्य के जो जड़ सूर्य है ना, वो पूरा जब निकलता है, हैं? जो जहां भी निकले तो साफ देखें, तो वो तो पहले पहले कौन से देश के वासी हैं? भारतवासी ही देखते हैं, क्योंकि जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो विदेशी आत्माएं जो हैं वो पहले पहचानती हैं पूरा पूरा, या स्वदेशी आत्माएं पहचानती हैं, क्योंकि अधूरा पहचानने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों? आज पहचाना कल भूल गए, नीमकी में खतरे जाना ऐसा तो डॉक्टर वैद्य बिल्कुल बेकार, किसी की जान ले लेता। तो जो विदेशी हैं वो तो भारत की परंपराओं को उतना तो नहीं जानते ना, है? जितना भारतवासी ऋषि मुनि आत्माएं जितना गहराई से जानते। तो हाँ, क्योंकि अब वो आत्माएं जो है नई नई उतरी हुई हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, दूसरे दूसरे जो धर्म आए हैं ना, धर्म के फॉलोअर्स, तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आए या पहले आए? है? पहले आए ना, पहले आए नहीं, वो तो बाद में उतरती है ना। तो बाद में उतरी हुई आत्माएं जो शिव बाप का जो घर है परमानेंट, तो वहां से जो आत्माएं आएंगी तो सात्विक आत्माएं ही आएंगी ना, है? हाँ सात्विक आत्माएं आती है, तो उनकी बुद्धि जो बाद में आती है, उनकी बुद्धि बहुत सतो प्रधान होती है। कौन सा धर्म है मुख्य धर्म है जो बाद में आता है? मुख्य 4 ही धर्म है, हाँ 4 धर्म है, तो उनमें ईसाई क्रिश्चियन वो लास्ट धर्म है, बाकी तो उनके छेड़े हैं सब। क्या क्रिश्चियन धर्म का बाद में आने वाला कोई सही होगी धर्म है? तो मुख्य धर्मों में जो लास्ट में आता है वो क्रिश्चियन धर्म वाली आत्मा है, बहुत तीखी बुद्धि होती है, हैं? इस दुनिया में तो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो पूरी पूरी रूप में बुद्धि का प्रयोग करके पहले वो अल्लाह मचाएंगी के बाद में, है? हाँ वो पहले वो अल्लाह मचाए देती, क्योंकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होने से वो जो साइंस बनाते हैं ना, विज्ञान, तो वो स्थूल चीजों का जो विज्ञान तैयार करते हैं, स्थूल यंत्रों का, उन यंत्रों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े होशियार होते हैं कि नहीं? हाँ बहुत होशियार होते हैं, तो बड़ी जल्दी तेजी से सारी दुनिया में जो उन्होंने पहचाना ना हो फैला देते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि जितना अध्ययन इन विदेशियों ने किया है, विदेशों में कौन सा ऐसा देश है जहां के लोगों ने बहुत अध्ययन किया है? जर्मनी, लेकिन विचारों का नाम ही देश का रखा हुआ है जड़ मणि। क्या कैसी मणि? हाँ, बुद्धि जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि स्थूल चीजों का आरोलन किया है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जो भौतिक चीजें हैं ना, भौतिकवाद, भौतिकवादी हुए ना, उनके यंत्र तैयार किए हैं अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे भी एटम बम। तो वो आत्मा जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण पहले पहले क्या करते हैं, बाबा ने तो बताई दिया तुम लोगों को, क्या फॉरेनर्स क्या करते हैं, फौरन करते हैं। थोड़ा सा बुद्धि में आया ये फटाक से दौड़ पड़े। ये नहीं पता है कि जिसको हम कहते हैं कि आया है, वो आया है वो कितना गहरा पुरुषार्थ बताने वाला है वो नहीं समझते। बस फौरन दौड़ लगाए देते हैं और चारों तरफ आवाज दुनिया में फैलाए देते हैं कि क्या भगवान इस सृष्टि पर आ गया। और वो जो भगवान आ गया है, हेवनली गॉड फादर, जरूर हेवन रचने के लिए आया है। तो पहले पहले तो बड़े जोर शोर से चलते हैं, नहीं चलेंगे है? भारतवासियों के मुकाबले जोर शोर से चलेंगे ना, क्योंकि भारतवासी क्यों देर में चलते हैं? शास्त्र तो सारे भारतवासियों ने लिखे हैं ऋषि मुनियों के रूप में, वो क्यों ढीले पड़ते हैं? क्योंकि एक तो उनकी बुद्धि आत्मा जो है वो ज्यादा सुख ज्यादा जन्म की भोगते भोगते तमो प्रधान बन गई, और दूसरे क्या है, ऋषियों मुनियों के जो लिखे हुए शास्त्र है ना, वो दाढ़ी मूंछ वाले ऋषि मुनि विकारी विकारी मनुष्य होते हैं ना। हाँ, तो उनकी विकारी बुद्धि से लिखे हुए जो शास्त्र हैं उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा बैठी हुई है भारतवासियों को, बैठी कि नहीं? हाँ, तो वो उनके वो बहकावे में जल्दी जो विदेशी है ना उनके कहते हैं ये तो हमको बहकाए रहे हैं, भगवान आया है, भगवान आए, हजारों लाखों साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग ही 40,000 वर्ष तो लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो अभी कहां से भगवान आ जाए, ऐसे सोते रहते हैं। क्या भारतवासी कुंभकर्ण सोते रहते हैं और वो चारों तरफ आवाज कर देते हैं, तो फिर उनको उनको प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? हैं? नहीं होगी। हाँ, वो अपनी प्राप्ति का हिस्सा तो बना ही लेते हैं, लेकिन उन फुलाहट में आकर के वो जल्दी से काम करते हैं ना। क्यों? एक कहावत है, क्या जल्दी का काम शैतान का, यही शैतानी हो जाती है उनके द्वारा। क्या कि पूरा समझते हैं नहीं है, बुद्धि जो है उतनी तो शार्प नहीं है उन आत्माओं की है। कितनी? जितने ऋषि मुनि आत्माओं की पहले जन्म शार्प बुद्धि थी, पहले जन्म में ऋषि मुनि वाली आत्माएं है जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, क्योंकि वो ऋषि मुनि की आत्माएं जो हैं वो द्वापर के आदि में ऋषि मुनि होते हैं ना, है आज से 2,500 वर्ष के अंदर ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, परंतु ये बात विदेशियों ने पहचानी कि 2,500 वर्ष के अंदर ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे गए, और ऋषि मुनि वाली आत्माओं ने जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया? हाँ, कि वो ऋषि मुनि हजारों साल पहले हुए हैं। हाँ, ऐसे लिख दिए, तो ऐसे ऐसी बातें लिख दी हैं, हरिश्चंद्र सतयुग के आदि में हुए है। ऐसे वो हुए, ऐसे ये हुए, तो अपना अपना टाइम के बारे में किसी को पता ही नहीं है के जो हेवनली गॉडफादर है सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर कब आता है ये पक्का किसी को पता नहीं। तो न पता होने के कारण सब अंधेरे में, भारतवासी सबसे जाती कुंभकर्णी नींद में, तो वो तो अंधश्रद्धा की नींद में सो रहे हैं और विदेशी आत्माएं जो हैं, वो पुरुषार्थ तो पहले करेंगे कि बाद में करेंगे? हाँ, तो वो दौड़ धूप करके और लहर फैला देते हैं दुनिया। तो पता है दुनिया का कौन सा शहर है जो विदेशियों का मुख्य शहर माना जाता है? हाँ, अब तुम्हें तो मालूम है कि बाबा ने तो बता ही दिया क्या कि लंदन नाम क्यों पड़ा। उन्होंने ज्ञान का सबसे जास्ती जब भगवान इस सृष्टि पर आया था, उन्होंने पहचाना ना, हो अल्लाह बचाया, तो उन्होंने ज्ञान का लेन देन शुरू शुरुआत में सबसे जास्ती किया कि नहीं? हाँ, तो अब बाद में उन्हें पता चलता है कि ये क्रिश्चियन धर्म तो बाद में आता है, क्योंकि भगवान बाप सुप्रीम सोल आते हैं तो जो भारतवासी ओरिजिनल वो आत्माएं हैं, ऋषियों मुनियों वाली ही समझो है, जो सृष्टि के आदि में थी, सतयुग के आदि में भी थी, और उनमें से कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जिनके शरीर जब जलमयी हुई थी षष्ठी पर एटम बमों आदि के फटनों से, कई कारणों से, तो वो आत्माएं इस षष्ठी में जलमयी के बाद जब बहुत ठंडी पड़ गई तो सारी पृथ्वी पर बर्फ जम गई, तो उसमें दब गई थी, शरीर दब गए थे। अब शरीर जो दब जाते हैं वो तो ज्यों की त्यों सुरक्षित रहते हैं कि नहीं है, कि सड़ जाते हैं? हाँ, सड़ सकते तो नहीं है, बाकी उनकी आत्मा जो है क्या सत्युग रूपी पहला सीन शुरू होने से पहले ही उनकी आत्मा शरीर त्याग करके अपनी इच्छा से और कहां की वासी हो जाती है? आत्मलोक की वासी हो जाती है। और उन आत्माओं का जो आत्मलोक है ना, वो भी इसी षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या वही होता है जहां इस षष्ठ रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाला चैतन्य सूर्य चारों सीन में चारों युगों में पार्ट बजाता है। जड़ सूर्य भी चारों युगों में पार्ट, चारों युगों में रोशनी देता है कि नहीं? हाँ, लेकिन चैतन्य सूर्य चारों युगों में रोशनी नहीं देता है। हाँ, वो आप समान किसी को तो बनाता होगा है? इसी दुनिया में बाप होते, अरे जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं ना, तो पहलौटी का कोई बच्चा तो पैदा करते हैं ना। हाँ, लंबे समय की जो पावर है सत्व है उनके अंदर, वो इकट्ठा होता है सालों साल का और उससे बच्चा पैदा होता है, है? तो ऐसे ही वो तो जड़ सत्व है, लेकिन सुप्रीम सोल का तो सुप्रीम सोल और उसके बच्चे निराकारी आत्माएं हैं ना, तो निराकारी आत्मा का जो सत्व होगा वो भी निराकारी ज्ञान ही होगा ना, तो उसमें जो अकूट ज्ञान का भंडार है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो उसे कभी भूलता ही नहीं, तो वो सृष्टि पर आता है, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उन बीज रूप आत्माओं को चुनता है जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज होते हैं। क्या इसीलिए शास्त्रों में ये अनुभव हुआ है ऋषियों को कि जब जलमयी हो गई तो जो सच्चाई का व्रत लेने वाला कोई सत्य व्रत नाम का अव्वल नंबर, जिसके नाम दिया सत्यनारायण या सत्य हरिश्चंद्र, तो कोई हुआ और उसने कोई कठबुद्धि नाव का सहारा लिया है, माने नाव तो काठ की होती है ना, वो पानी पे तैरती रहे, डूबेगी तो नहीं ना, तो वो स्थूल नाव की बात नहीं है, ये तो उस आत्मा की बात है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, पृथ्वी के रूप में चैतन्य पार्ट धारी है। तो बुद्धि जड़ होगी है? और आत्माओं के मुकाबले, और बीजों के मुकाबले जड़ बुद्धि होगी कि चैतन्य बुद्धि होगी है? जड़ तुम्हारी बुद्धि, तो वो आत्मा जो है वो बनती है क्या, वही नाव कही जाती, चैतन्य नवैया कहो है, वो चैतन्य नवैया में वो सारे बीज रखे जाते हैं। बीज कौन से, चैतन्य आत्मा, मुखिया कौन है रखने वाला, वही सत्यव्रत है, तो वो सत्यव्रत कहो, सत्य हरिश्चंद्र कहो, सत्यनारायण कहो, वो आत्मा मुखिया के रूप में उन सब चैतन्य बीज रूप आत्माओं को लेकर के और विहार करती है जलमयी में, धीरे धीरे वो जलमयी शांत होती है, और शांत होती है तो फिर क्या होगा, कुछ जो जड़ पृथ्वी है उसका हिस्सा निकलेगा ना, वो हिस्सा निकलता है तो क्या सारी पृथ्वी डूब जाती है ना, डूब जाती है नहीं, सारी पृथ्वी तो नहीं डूब सकती, क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो तो सारे तो नहीं डूब जाएंगे एकदम, जल प्रलय भी होगी तो धीरे 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 जल स्तर ऊंचा उठेगा ना, जैसे आज भी समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ रहा है ही नहीं, हाँ तो धीरे धीरे ऊंचा उठता है, और जब एटम के विस्फोट होते हैं तो धड़ाक से ऊपर जल्दी जल्दी उठ जाता है, तो ऐसे ही है कि वो पृथ्वी का जो जलमयी हो जाती है स्वरूप, तो वो कुछ हिस्सा रह जाता है, कौन सा हिस्सा रह जाता है, वही एवरेस्ट चोटी, एवर ईस्ट, क्या जो भारत के बिल्कुल ईस्ट में है, जहां से सूर्य उदय होता है, तो वो तो जड़ है, चोटी जड़ है, तो उसके मानिंद उसका उदाहरण चैतन्य में कोई चैतन्य वो चोटी भी होगी, तो वो है ब्राह्मण चोटी, क्योंकि भगवान बाप आते हैं ना, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो वो इस सृष्टि पर जिन चार पांच मनुष्य आत्माओं को चुनते हैं, कुछ ज्यादा ही सच्ची होंगी ना, तो उन सच्ची सच्ची आत्माओं को आधार बना करके उनमें जो नंबर वन आत्मा है उसको कहा जाता है ब्राह्मण चोटी, समझा। ब्राह्मण चोटी का मतलब ये है कि जो शास्त्रों में भगवान का विराट रूप दिखाया है ना, जिसमें सारी दुनिया के सारे जीव जंतु है, ऋषि मुनि सन्यासी देवताएं है, दैत्य राक्षस सब कुछ दिखाया है, वो है ही विराट रूप सृष्टि का। तो उसमें जो चोटी भी तो कोई होगी, विष्णु है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है तो चोटी नहीं होगी। तो वो चोटी जो है बहुत पुरानी चीज है कि नई चीज है, है? हा एकदम बहुत पुरानी सनातन। हा तो उसको कहेंगे सनातन पुराण पुरुष, शास्त्रों में उसका नाम दिया है। कौन? वो ही आदम, क्या एडम है, भारत में क्या नाम दिया आदिदेव है, जैनियों ने क्या नाम दिया आदिनाथ है। तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल जैसे एवरेस्ट चोटी है, सब डूब जाते हैं वो बची रहती है, वैसे वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जल प्रलय होती है तो वो शरीर से भी, पांच तत्वों का जो संघात शरीर है ना, उससे भी और आत्मा से भी क्या रहती है कि वो भी खत्म हो जाती। वो एक बीज इस सृष्टि पर सारी सृष्टि का जड़ और चेतन का बीज मुकर्रर रूप से इस सृष्टि पर सदा काल रहता है। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में ये लिख दिया क्या कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी ऐसी आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, जो कभी जन्म ही नहीं लेता है। उस समय की बात ऐसे थोड़ी कि वो जन्म जन्मांतर चारों सीन में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, आता है लेकिन वो उनकी बुद्धि में उस समय की बात ऐसी भरी हुई है ऋषि मुनियों की बुद्धि में कि वो एक ही है जिसको किसी ने मरते हुए प्रलय काल में उसको किसी ने मरते हुए नहीं देखा, और उनको मरते हुए देखा, डूब रहे हैं उतर आ रहे हैं खत्म हो रहे हैं हा? वो नहीं। तो वो उसी ब्राह्मण चोटी में, क्योंकि ब्राह्मण नाम दिया है शास्त्रों में तो ब्राह्मण किसे कहा जाता है हा? शिव की औलाद को शैव कहा जाता है, जो शिव के ज्यादा फॉलो करने वाले होते हैं। विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है, है? जो कंबाइंड लक्ष्मी नारायण के रूप को ज्यादा फॉलो करते हैं, और ब्रह्मा के फॉलोअर को क्या कहा जाएगा, ब्राह्मण कहा जाएगा। एक मात्रा बढ़ती है ना, तो वो कोई तो पहला ब्राह्मण होगा। ऐसे तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया को नंबर वार ब्राह्मण बनाते हैं या कोई मनुष्य मात्र को छोड़ देते हैं? नहीं, जो भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि के हैं सबकी सदगति करने के लक्ष्य से आते हैं क्या। लेकिन पहले एक की सदगति होगी कि सबकी होगी, किसकी होगी? पहले एक की सदगति। तो जिस वो चोटी में पहले पहले प्रवेश करते हैं है? वो ब्राह्मण चोटी नाम पड़ता है, है? कैसे ब्राह्मण चोटी नाम पड़ता, ब्रह्मा तो है ही नहीं है? नहीं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो धरणी भी तो जो चोटी के रूप में दिखाई गई है वो होती है ना, नहीं होती? हाँ, वो धरणी का सबसे ऊपर का हिस्सा है ना, नहीं है? है? तो वो चोटी भी है, स्थूल चीज जड़ भी है, हैं? और पत्थर बुद्धि भी, पत्थर बुद्धि भी बन जाती। ये तो समझ गए ना क्यों पत्थर बुद्धि? क्योंकि जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पुराण पुरुष वाली आत्मा होगी, पुरुष माने आत्मा, पुराने थे पुरानी सनातनी आत्मा, जिसने दुनिया का पहला धर्म स्थापन किया होगा। भारतवासी कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, क्या ये जानते ही नहीं है तुम सनातन धर्मी है तो अपने बाप का नाम बताओ, है? उस धर्म को किसने स्थापन किया? देखो जो बाद में आए हैं इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, है 2500 साल के अंदर आए हैं, वो जानते हैं हमारे बाप का नाम क्या है, है? जानते कि नहीं? इस्लामी जानते हैं हमारे बाप का नाम इब्राहिम, बौद्धि जानते हैं बुद्ध, है क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट, और भारतवासी आहा एकदम ऐसे पत्थर बुद्धि की औलाद बन जाते हैं। कौन सा पत्थर बुद्धि? बोई बोई क्या नाम दिया? अरे बाहर की दुनिया में नाम देते हैं बाबा, जिसका मिसाल देते हैं, अरे कोई भी नहीं लिख रहा, वो लिख रहे अच्छा एवरेस्ट, हाँ क्या लिखा? ग्रेनाइट, हाँ वो पत्थर ही होगा कोई, है पत्थर नहीं होगा? हाँ पत्थर ही होगा, बिना पत्थर के थोड़ा ही पहाड़ बन जाते हैं, चोटियां बन जाती हैं, बन जाती हैं नहीं? हाँ तो वो जिस ब्राह्मण में प्रवेश करता है वो ब्राह्मण चोटी ब्रह्मा की औलाद कैसी बनती है? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद बनने के लिए तो ब्राह्मण बनने के लिए क्या चाहिए, है? अरे एक अच्छा लिखने में कितनी देर करते हैं, ब्रह्मा चाहिए, तो वो तो पत्थर बुद्धि ब्रह्मा, उसको क्या कहेंगे पत्थर बुद्धि को, है? पहले पहले ब्रह्मा कहें, कहें, है? कहें, नहीं, क्यों नहीं कहें? अरे ब्रह्मा से तो सारी सृष्टि ने जन्म लिया, अगर कहें कि शास्त्रों में लिखा है परम ब्रह्म, है लिखते तो हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस परम ब्रह्म का कोई शास्त्र बनाया है? बनाया? उसका कोई स्वरूप दिखाया है? दिखाया है? नहीं? करने से क्या समझ में आएगा, पढ़े लिखे आदमी गूंगे हो तो क्या? आज की गवर्नमेंट ने गूंगों को भी तो पढ़ना लिखना सिखाई दिया ना, हाँ क्या परम ब्रह्म ज्योति बिंदु है बुद्ध कहेंगे, अम्मा कहीं ज्योति बिंदु होती है, है? निराकार होती है नहीं? अम्मा निराकार होती है तो फिर तो सारा काम बन जाए, अम्मा जो है आधार होती है, निराकार नहीं होती है, है? जैसे ये पैड है, है? अब ये पैड है तो आधार है, इस पे ये गिरा आके ऊपर से गिरा ना तो इसने थाम लिया, इसने थामा ना तो ये आधार है, ये स्थिर है, और ये स्थिर नहीं है, ऊपर से नीचे आया, हाँ तो जो स्थिरियम है वो है पृथ्वी। स्थिरियम का मतलब क्या है? भले जलमयी हो जाती है तो भी जलमयी के अंदर कहीं तो पृथ्वी होगी ना, ऊपर ऊपर जल होगा, अंदर अंदर पृथ्वी होगी, है ना। हाँ ये जो समंदर है ना, सागर, सागर तो पिता है और पृथ्वी माता है, धरणी को माता कहते हैं ना, तो माता पिता में इतनी ताकत होगी कि नहीं, इतना विशाल पिता होगा, ज्यादा विशाल, जैसे पांडवों को कैसा दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कोई उनकी आत्मा बड़ी होती, ताकत ताकत दिखाई है, तो ऐसे ही ये देखने में समंदर जो है बड़ा दिखाई पड़ता है और पृथ्वी तो छोटी है, छोटी का मतलब ताकत कम है, जड़त्वमयी बुद्धि होने से कम ताकत वाली है। तो जब पिता अपने फोर्स में आता है तो पृथ्वी को अपने कब्जे में पूरा ले लेगा कि नहीं लेगा, ले लेता है, तो सारी पृथ्वी पर वो समंदर ही समंदर, जलमयी ही जलमयी हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी गोद में वो धरणी है ही नहीं, होगी ना, तो हाँ उसका एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी रहता है धरणी का जो जलमयी से ऊपर है, तो वो ही है वास्तव में, क्या वो जड़त्वमयी रूप भी है जिसका मानिंद दिखाया है उदाहरण एवरेस्ट चोटी है, वो जिसको कहें कि पूर्वीय सभ्यता का बीज, तो वो आदम एडम वो ही वास्तव में जो बीज रूप आत्मा है, वो फिर भी तो आखिर जलमयी हो गई, तो कहीं टिका है कि उसको समंदर में अंदर चला गया है, टिका है ना, किसके ऊपर टिका है, अरे किसी के ऊपर टिका है कि नहीं, काय के ऊपर टिका है, है? अरे वो तो स्वयं ही चोटी है, वो चोटी किसके ऊपर टिकी है, है? हाँ पृथ्वी के ऊपर टिकी, पृथ्वी में भी पहले पहाड़ है कि पहले पृथ्वी कही जाती है, पहाड़ पृथ्वी के ऊपर है या पृथ्वी पहाड़ के ऊपर है, पहले तो नीचे धरणी है और ऊपर पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर वो चोटी है ना, तो चोटी का आधार कौन सा पहाड़ हुआ, चोटी का आधार हुआ जिसको कहते हैं हिमालय पहाड़, इतना ऊंचा है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कि वहां सदा बर्फ ही बर्फ जाम रहती, तो वो चोटी का जो आधार है वो कोई चैतन्य होगा जिसे शास्त्रों में कह दिया हिमवान, हिमवान हिमालय, हिम का आलय, हिम का बर्फ का घर है, तो वो बर्फ का घर पहाड़ जो है वो उसका आधार, इसका मतलब ये हुआ कि वो चोटी जो है उसका आधार है कोई, वो चोटी का जब तक वो आधार न बने, कौन कौन, वो ब्रह्मा जो इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा को ब्राह्मण बनाने के अब्बलम्बर ब्राह्मण से लेकर के अंतिम छोर का ब्राह्मण बनाने के लिए संसार में प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बन जाता है, बनता है कि नहीं, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्ध्वमुखी ब्राह्मण वो ब्रह्मा दिखाया गया है उसको लोग भूल जाते हैं ना, है? क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच पार्ट बजा के दिखाता है सृष्टि पर, हीरो पार्ट धारी, तो शूटिंग पीरियड में भी वो काम करेगा कि नहीं, अपन को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ना, जीरो बन गया, और जीरो से हीरो बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हीरो बनकर ही दिखाता है। कौन सी पावर से? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं परमानेंटली, तो वो सुप्रीम सोल के दिए हुए त्रिकालदर्शिता के ज्ञान से वो राजयोग की विधि अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा लेता है। और वो राजयोग की विधि अच्छी तरह से बुद्धि में बैठती है ना, तो पहले किसको बुद्धि में बैठेगी? वो राजयोग की विधि जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है, विज्ञानों का भी विज्ञान, आज की जो साइंस है वो साइंस तो जो ईश्वर ने आकर के विज्ञान सिखाया उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज के वैज्ञानिक ढींग तो बहुत मारते हैं, क्या कि हम ग्रह उपग्रहों नक्षत्रों के ऊपर पहुंच जाएंगे, उन पर कंट्रोल करेंगे और वहां बिल्डिंगें बनाएंगे, रहायश करेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भगवान हैं, भगवान अगवान कुछ भी नहीं होता, क्या हमारे मुकाबले कोई भगवान नहीं होता। दुनिया की बुद्धि में बैठा लेते हैं अच्छी तरह से, सारी दुनिया नास्तिक बन जाती। भारतवासी, जिन भारतवासियों को भगवान पहले मिलता है इस सृष्टि पर, वो भी क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं। तो वो नास्तिक जो हैं, जो नई नई आत्माएं उतरती हैं ना, तो बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर जड़त्व चीज को तो पहचान लेते हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जो कुछ भी नहीं जानते हैं, सारी सृष्टि पर नास्तिकता फैल जाती है, तब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के वो विज्ञान सिखाते हैं। कौन सा? आत्मज्ञान है। तो वो आत्मज्ञान के आधार पर बताते हैं कि तुम बच्चे जैसे मैं हूं ज्योति बिंदु निराकार, इतना निराकार की आंखों से, तो क्या तुम्हारे वैज्ञानिक यंत्र है ना, वो भी इसे नहीं देख सकते? आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा को ही नहीं देख सकते। तो जो आत्माओं में भी सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, ज्यादा पावरफुल है, एटम बम बनाते हैं ना, तो एटम को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते, तो उससे फिर बड़ी पावर तैयार हो जाती है। तो आत्माओं में भी जो सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा है वो कौन हुई? अरे इतनी देर, हाँ, सुप्रीम सोल शिव। शिव नाम क्यों दिया? शिव नाम इसलिए दिया कि कल्याणकारी अर्थ है उसका। दुनिया की जितनी भी सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं हैं, या राक्षसी आत्माएं हैं, कोई भी मनुष्य है, तो उनमें सबसे जास्ती सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता ना, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो सुप्रीम सोल शिव, उसमें ये शिफ्ट है कि वो सबका कल्याण करने वाला है, चाहने वाला है, करता तो नहीं, क्योंकि वो तो करता है ही नहीं। वो करता है क्या? करता है वो तो करता है। तो वो शिव जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है, इस सृष्टि पर आता है, तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ब्राह्मण चोटी को परमानेंट अपना रथ बनाए लेता। कैसा रथ? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान का भंडार देता है, जिस ज्ञान के भंडार से है, क्या कहें उस ज्ञान के भंडार के सार को, वो सार आज में और वो ही सार फिर अंत में संसार में प्रत्यक्ष होता है। और एक अक्षर लिखो, गीता ज्ञान। तो जब इस सृष्टि पर आता है तो भी जिस मुकर रथ में प्रवेश करता है वो ओरली वही गीता ज्ञान सुनाता है। ये जो आज गीता शास्त्र मिल रहा है वो तो विकारी बुद्धि दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम सोल हेवेनली गॉड फादर ने जो ज्ञान सुनाया था, जैसे और धर्म पिताएं किताबें लिखते हैं, बाइबल कुरान है? लिखते हैं नहीं, ये तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। ऐसे ही सुप्रीम सोल हेवेनली गॉड फादर शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ओरली जो उन्होंने ज्ञान का गीत सुनाया वो गीत शॉर्ट में सुनाते हैं। क्या सार सार में होता है कि विस्तार में होता है? हाँ, फिर बीज तो सार में ही होता है और बीज का विस्तार होता है तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष को कहते हैं क्या? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने मनरूपी घोड़ा है, और वो मनरूपी घोड़े को स्थिर किया। मनरूपी घोड़ा जो स्थिर हो गया उसका नाम पड़ा अश्वत्थ वृक्ष। शास्त्रों में दिखाया है ना, गीता में भी लिखा हुआ है, और पूरे अध्याय में, एक अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बात बताई है डिटेल। तो वो अश्वत्थ वृक्ष भी, लोगों को पता नहीं है कि अश्वत्थ वृक्ष भी सार रूप में बीज बनता है और बीज बीज से विस्तार भी बनता है। क्या तो चैतन्य वृक्ष है इस सृष्टि पर, चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है या जड़ चीजों का वृक्ष है? चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है ना। तो उन चैतन्य आत्माओं में जो बीज रूप आत्मा है वो ही आदम है। क्या वो आदम में, आत्मा में जैसे और मनुष्यों में मन होता है, उसमें भी मन होगा या नहीं होगा? होगा ना, बुद्ध रूपी आत्मा तो है ही, सभी मनुष्य आत्माएं चैतन्य बुद्ध रूपी आत्मा हैं। लेकिन एक बात और भी है, प्योर चैतन्य बुद्धि जो है वो एक सुप्रीम सोल ही है, हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि। लेकिन जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माएं हैं या प्राणी हैं या जो भी जीव जंतु हैं, तो उनमें या तो जड़त्व वाला मन है, जैसे बंदर होता है, उसकी आंखें चंचल होती है ना, इंद्रियां भी बड़ी चंचल होती है ना, तो वो चंचलता जो है ना, वो ही चंचलता घोड़े से मिसाल दिया जाता है उसका, है सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है ना, है कि नहीं? नहीं है। अरे भाई, मनुष्यों के काम में आने वाला ऐसा प्राणी कौन है जो बहुत तेज दौड़ता है? और तुम कहो हिरन है, अरे उसको कोई घोड़ा बना पाएगा? वो तो फंस जाएगा और वो तो चलेगा ही नहीं जैसे चलाना चाहो। तो घोड़े का मिसाल दिया। तो ये मन रूपी जो घोड़ा है ना, वो मन रूपी घोड़े में भी जो आत्मा बीज है, मन की भी बीज है, वो कौन हुई? अरे इतनी देर लगा दे, कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा भी तो ढेर चार चार पांच पांच मुख वाले हो गए। पांच मुख होंगे तो पांच शरीर भी तो होंगे उनके। हाँ, जिसको नाम दिया ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। तो वही जो ऊर्ध्वमुखी सिर है वही परम ब्रह्म हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मुकर्र रूप से शिव बाप आदि के 100 वर्ष से लेकर के अंत तक 100 वर्ष में उसमें कार्य प्रवेश करके करते जरूर, किसी भी रूप में करें, वाचा के रूप में करें, ज्ञानेंद्रियों के रूप में करें, मुख से वाणी चलाने के रूप में करें, कैसे भी करें, तो वो आत्मा पता चल गई। पहले उसका नाम परम ब्रह्म दें, अरे ब्रह्मा अम्मा बाद में बनती है कि पहले बन जाती है? पहले कौन? हाँ, पहले तो मनुष्य सृष्टि का बाप चाहिए ना, तो बाप जो सब धर्मों में प्रसिद्ध है, आदि देव आदिनाथ आदम एडम नाम दिए हुए ना, नाम में सामिता है ना, तो वो नाम आज भी सब धर्मों में प्रसिद्ध है। जो मुसलमान भी कहते हैं, अरे भाई तुम कब की बातें करते हो, जहां की बातें किसी को पता ही नहीं है, सब भूल गए हैं, बाबा आदम की बातें तुम क्यों करते हो, बाबा आदम के जमाने की, ऐसे कहते हैं ना। तो वो पुराने से पुराना वो शास्त्रों में लिखा हुआ पुराण पुरुष है, वो पुराण पुरुष जब सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो 100 साल के आदि के समय में भी था, वो उसको नाम दिया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि जिसमें प्रवेश करते हैं ना तो उसका कुछ नाम तो देते ही हैं, प्रवेश करते हैं तो उसका नाम, प्रवेश करने वाला अपना काम निकालने के लिए अम्मा नाम देता है। क्यों अम्मा? अरे वो तो मनुष्य मात्र का, मनुष्य मात्र की आत्माओं का बीज है कि अम्मा है, क्या है? बीज है, बाप है, और सुप्रीम सोल खुद भी बाप है, आत्माओं का क्या है? बाप। तो बाप और बाप मिलकर क्या सृष्टि चल, साकार सृष्टि बन जाएगी? तो इसलिए शिव बाप वही बुद्धि का कमाल दिखाते हैं। इसलिए आप लोग तो जानते हैं पहले से ही, क्या बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा तो पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बनाई देते। तो जिस तन में प्रवेश किया, भले पुरुष है तो उन्होंने अपनी समझ से क्या बनाई लिया? हाँ, वो तो जो चाहे सो कर सकता, भगवान है ना, तो उसने बुद्धि घुमाई। हाँ देखो, इसमें एक तो जड़ तत्व तो है शरीर, है कि नहीं है? वो जड़ तत्व तो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर अगर कोई चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाला है, जड़ में भी और चैतन्य में भी, तो वो धरणी माता है कि नहीं है? धरणी माता है। और कौन है? हाँ, धरणी माता है तो कोई विधवा थोड़ी ही होगी, सदवा होगी ना, तो उसका बाप भी है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें वो प्रवेश करता है परमानेंटली, वो बाप को बुद्धि से क्या बना लेता है? माता बना लेता है। हाँ, और उस माता के द्वारा, वो माता में मन होगा कि नहीं? वो तो है ही है, क्योंकि तन है तो मन है, और तन की स्मृति नहीं तो मन भी नहीं। तन में ही मन है कि तन के परे मन है? सूक्ष्म शरीर भी होता है तो भी उसमें मन होता है क्या? हाँ, तो ये दुनिया तो भूत प्रेतानी दुनिया बन गई कि नहीं? उन भूत प्रेतों के बारे में जो ऐसी सूक्ष्म आत्माएं हैं जिनके बारे में आज के वैज्ञानिकों को कुछ भी पता ही नहीं है, और पता न होने के कारण वो उस शक्ति से डरते भी है। क्या बड़मूला ट्रायंगल में जाने से डरते हैं कि नहीं? क्यों डरते हैं? उन्हें पता नहीं है कि मूल कहा जाता है जड़ को। क्या दुनिया की बड़े से बड़ी जो मूल है, मूल माने जड़, आधार, वृक्ष का आधार होता है ना, तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का भी आधार है। क्या आधार है? है वही परम ब्रह्म। हाँ, वो जो परम ब्रह्म है ना, वो भूतों का भी भूत, उसको कहते हैं शास्त्रों में लिखा भूतनाथ। हाँ, वो बहुत गहरा होगा, है मन बुद्धि से गहरा होगा या उथला होगा, बहुत गहरा। तो समझ लो वो जो बड़मूला ट्रायंगल है ना, वहां भी सागर गहरा होगा कि उथला होगा? सबसे जास्ती गहरा। ऐसे भी आज तक दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक हो, उसने अपने यंत्रों से सागर की गहराई को नहीं नापाया। देखो, नापाया तो किसने नापाया? नापाया जरूर नापा। जैसे वो कहते हैं ना कि वो कोई चंद्रमा पर गया था, है? और फिर होके आया तो लोगों ने हल लोड़ा दी, चंद्रमा पर गया। वो पहुंचा था चंद्रमा पर? पहुंचा ही नहीं। बस ऐसे ही लौट आया, क्योंकि हर ग्रह उपग्रह पर सदा काल कोई रह सकता है क्या? है? हाँ, नहीं रह सकता। वहां तो जल ही नहीं है। कहाँ? चंद्रमा पर जो गहरे गहरे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ना, दिखाई देते हैं ना, वो वास्तव में गड्ढे हैं। और जब वो चंद्रमा जो उपग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी से जरूर अलग हुआ होगा, जब जलमयी हुई थी, तो जब जलमयी हुई थी एटमिक विस्फोट के कारण, तो वो चंद्रमा जो है वो उसमें से जो गड्ढे दिखाए गए हैं गहरे गहरे, उनमें से जल खिंच करके पृथ्वी पर आया होगा या नहीं? है? लिक्विड चीज जो पृथ्वी से दूर जाएगी तो लिक्विड पृथ्वी खींच लेगी कि वहां रहेगा चंद्रमा पर? नहीं। तो जितने भी गहरे गहरे होल है ना, होल्स, कहीं भी जल का नाम निशान नहीं। तो पता चला कि इस पृथ्वी पर भी जो चैतन्य पृथ्वी है, और उस चैतन्य पृथ्वी के जो नजदीक है सबसे जाती ग्रह उपग्रह को चंद्रमा, वो आत्मा भी उसमें ज्ञान जल की नाम निशान नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्ञान जल का अगर उसमें नाम निशान होता तो वो पहले ही जब बाप ने बताया मुख से क्या कि तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो, तो आत्मिक स्थिति में टिकता या नहीं टिकता? नहीं टिका। टिका कि नहीं टिका? नहीं टिका। नहीं टिका इसीलिए हार्ट फेल हो गया, क्योंकि जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में टिकना जान लेती हैं और टिकती भी हैं, उनका हार्ट फेल नहीं हो सकता। हार्ट फेल उन्हीं का होता है जो देहभान में रहते हैं। और देह भान में रह करके देह के सुख भोगना नहीं भूल पाते। तो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर जो षष्टि रूपी वृक्ष है इसकी वो आत्माएं हैं बीज रूप, क्या जो सृष्टि के आदि से ही बीज रूप है, क्या और नंबर वार बीज हैं। कोई ने थोड़े समय की बीज रूपी स्टेज धारण की है, प्रैक्टिस की है, और कोई ने लंबे समय की बीज रूपी स्टेज धारण की है। सबसे ज्यादा किसने धारण की? कोई ने तो की होगी 100%। हाँ, उसको नाम दिया है योगेश्वर। अरे किससे योग लगाया होगा उसने? योगेश्वर, योगियों का योगेश्वर, योग कहा ही जाता है। एक और एक को जोड़ दो तो हुआ योग, दो हो गया, ताकत बढ़ गई। हाँ, तो उसके लिए तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा उसकी नजर में कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जो अनुभव करता है वो ये अनुभव पक्का कर लेता है कि इस दुनिया में सब झूठे हैं, क्या एक भी सच्चा है ही नहीं जो उसे पसंद आए। कब? कब? जब सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान देते हैं तब जान लेता है सारे झूठ। क्या? तो उसे कब पता चलता है? क्या वो 100 वर्ष की शुरुआत जब सुप्रीम सोल बाप ने आकर के सार रूप में गीता का ज्ञान सुनाया था उस समय पता चला है? हाँ, अरे 5 दिसंबर तो हर वर्ष होता है। हाँ, 1969 की बात होगी। क्यों 69 की? क्यों 67 की क्यों नहीं हो सकती? 67-68 की? इसलिए नहीं हो सकती कि भगवान बाप आकर के इस सृष्टि पर क्या सिखाता है, बड़े से बड़ी राज की चीज राजयोग सिखाता है। किस लिए सिखाता है? क्या प्राप्ति करने के लिए? और राजा ही प्राप्त करने के लिए, और राजा ही जन्म जन्मांतर जो है चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो कौन बनते हैं, उनमें क्या शिफ्ट खास होती है, कौन सी विशेषता होती है? आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति वो कृष्ण वाली आत्मा में नहीं होती, या बीज रूप आत्माएं जो और हैं उनमें नहीं होती। अरे जन्म जन्मांतर राजा बनना है तो क्या सिर्फ स्वर्ग में ही राजा बनना है कि नरक में भी राजा बनना? अरे तुम्हें तो पता है ना है? बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला के क्या, मैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है, और नरक की दुनिया मेरी है तो क्या स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है? वो तो स्वर्ग और नरक दोनों की दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने वाला है ना, तब तो ऐसा ज्ञान सिखाता है जिस ज्ञान के आधार पर है जो पतित से पतित आत्माएं आती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच, कमजोर जिस कमजोर आत्माएं वो भी मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है, ज्ञान के आधार पर पाती है ना। हाँ, तो वो रंगमंच पर आकर के उस आत्मा में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से माने आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी। क्यों भाई, एक में ही क्यों नहीं काम कर सकता है? अनेकों में प्रवेश करने की क्या दरकार है? कारण क्योंकि हाँ, 100 साल तो सभी धर्म पिताएं आते हैं, काम करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं वो। हाँ, जिन बीजों में सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं चलता कब आए कब चले गए, क्योंकि वो तो हल्की फुल्की ज्योति बिंदु आत्मा है, कोई सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतानी आत्मा तो है नहीं जो दबाव पड़ जाए। तो उसकी तो पाप कर्म है ही नहीं, पापों का बोझ होता है। तो वो सुप्रीम सोल जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, कोई में भी प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाँ, जितनी भी षष्ठी रूपी रंगमंच के चमकीले चैतन्य सितारे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है 9 लाख सितारे दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। क्या, कितने सितारे? 9 लाख सितारे। तो वो 9 लाख सितारे जो गांव देहात में बोलते हैं, रानी के गले का हार 9 लाख हार। अब वो ये नहीं जानते कौन सी रानी का गले का हार है। राजा रानी भगवान ने बनाए होंगे तो कोई अव्वल नंबर के तो बनाए होंगे ना, वो तो अव्वल नंबर की रानी बनी होगी है ना, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली महारानी बनी होगी। तो उसने 9 लाख आत्माओं को है, आत्मा गोल हुई ना छोटी सी बिंदी, तो 9 लाख आत्मा रूपी सितारों को अपने गले का हार बनाया होगा ना, नहीं बनाया होगा? कैसी आत्मा है? कोई तो मोतियों की माला पहनते हैं है? कोई अच्छे रत्न की माला पहनते हैं, रत्न तो 9 प्रकार के हैं ना। तो जो ऊंचे से ऊंचे ज्यादा कॉस्टली रत्न होता है वो कौन सा होता है? हीरा। तो जो हीरे जैसी आत्माएं है क्या, वो बीज रूप आत्मा है जो चमक मारती है सितारों की तरह, जैसे आसमान के सितारे होते हैं ना चमक मारते हैं, ऐसे ही ये सारी सृष्टि पर 9 लाख आत्माएं हैं जो चमक मारती है। उन 9 लाख आत्माओं में से 4.5 लाख तो ऐसी हैं जो स्थूल रूप में बीज हैं, माने शरीर से बीज हैं। क्या, आत्मा भी बीज रूप और शरीर भी बीज रूप, लेकिन 4.5 लाख ऐसी हैं जो उनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है, वो भी चमकीली बनती हैं, ऐसे नहीं बनती हैं। तो टोटल 9 लाख आत्माएं हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी दुनिया में मनुष्य मात्र के अंदर, चाहे वो देव आत्माएं हों, 16 कला संपूर्ण हों, कम कला वाली हों, है या राक्षसी आत्माएं हों, ऋषि मुनियों की आत्माएं हों, सबको क्या करती है वो 4.5 लाख आत्माएं, उनमें वो ताकत आ जाती है। क्या ताकत? कि शरीर को छोड़ दे और शरीर यूं ही जड़ पड़ा रहे जैसे यंत्र जड़ पड़ा रहता है। क्या, जैसे स्पीकर है ना, है स्पीकर है वो पड़ा हुआ है और उसमें से ऊर्जा आ गई, ऊर्जा माने करंट, करंट निकल जाए तो बोलेगा नहीं बोलेगा? तो ऐसे ही ये बीज रूप आत्माएं हैं संगम युग में होना, जो सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उनमें प्रवेश कर करके अपना पाठ बजाती, उनकी बुद्धि को ठिकाने लगाती है ज्ञान पूरा समझने की योग्य। तो वो 4.5 लाख आत्माओं का जो सबसे बड़ा बीज रूप भाई है कौन हुआ? आदम, मनुष्य सृष्टि का हीरो। वो हीरो को कोई प्रश्न करेगा कि भाई ब्राह्मण कैसे बना, क्योंकि ब्राह्मण तो तभी बनेगा जब ब्रह्मा हो। तो शिव सुप्रीम सोल ने हम लोगों को बता दिया। क्या बता दिया? कि मैं जब आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो अकेला नहीं आता हूं। क्या? तीन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य के रूप में मौजूद जरूर होते हैं, और चाहे वो पुरुष के रूप में हो और चाहे वो स्त्री के रूप में। स्त्री में भी मैं पतित में प्रवेश करूंगा कि पावन में प्रवेश करूंगा? लिखो लिखो एक अक्षर नहीं लिख पाते। पतित में प्रवेश करें तो पतित तो माताएं होती है, कन्या माताएं ही पतित होती है। तो कोई दो माताएं निमित्त बनती है और एक आदम पुरुष निमित्त बनता है। अब कोई सवाल करेगा क्यों माताओं को पहला नंबर क्यों नहीं बनाया, परमानेंट अपना रथ क्यों नहीं बनाया? करेगा ना कोई प्रश्न है? कारण तो कारण मालूम है क्या है? हाँ, स्त्री चोला वो तो ठीक है, माता है तो स्त्री चोला ही होगी। ये कौन कहेगा कि माता है तो स्त्री चोला नहीं होगी? स्त्री चोला है ना, तो शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करेगा है ना, गॉडफादर कहा जाता है ना, अल्लामिया कहा जाता है ना, भगवान कहा जाता है ना, दुनिया के सब नास्तिकों को छोड़ करके ज्यादातर लोग तो भगवान को मानने वाले रहे हैं ना जन्म जन्मांतर। तो सब क्या चाहेंगे है कि भगवान इस सृष्टि पर हो तो हम उससे मिले कि न मिले है? नहीं मिले, सबकी इच्छा होती है। तो ये है कि कोई क्लोज कांटेक्ट में आके मिलेगा, कोई क्लोज कांटेक्ट में नहीं मिलेगा। वो भी क्यों? वो भी इसलिए कि पूर्व जन्मों में जिसने ज्यादा संग लिया होगा, पूर्व जन्मों में यो पार्टधारी सृष्टि पर चारों योगों में पार्ट बजाता है, चारों सीन में, तो ज्यादा किसी ने संग लिया होगा कि नहीं, नंबरवार ही लिया होगा ना। तो जिन आत्माओं ने नंबरवार जास्ती संग का रंग लिया, स्वर्ग में भी लिया हो नरक में भी लिया हो, तो उनको ज्यादा खींच होगी कि दूसरों को ज्यादा खींच होगी? उसी को ज्यादा, उन्हीं को ज्यादा खींच होगी, नंबर बार खींच होगी। समझ में आ रहा है कि थकान हो रही? हाँ समझ में आ रहा है। तो वो नंबर बार 4.5 लाख आत्मा है क्या, जो नंबर बार कनेक्शन में आती है। कोई ज्ञान इंद्रियों में भी मुख्य इंद्रियां आंखों के कनेक्शन में आती है, कोई कानों के कनेक्शन में आती है, है? और कोई को दूर से ही सुगंध आ जाती है, है? वो जो फूलों में से सुगंध निकलती है वो तो स्थूल है, सूक्ष्म सुगंध कौन सी है? हाँ, पवित्रता की सुगंध, गुणों की सुगंध है, ज्ञान की सुगंध। तो कोई नाक से नजदीक आ जाते हैं, कोई मुख से रूबरू वार्तालाप करते,
कोई
हाँ कान से सुनते सुनते कि नहीं? हाँ बहुत सुनते और नजदीक है अनुभव करते हैं, तो कोई स्पर्श भी करते, स्पर्श की इंद्रिय है ना, वो भी तो ज्ञान इंद्रिय है ना, और कोई तो ऐसे हैं कि ज्ञान इंद्रियों से तो क्या कर्म इंद्रियों से भी पूरा संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं, है ना? तो नरक की दुनिया के भी संबंध है और स्वर्ग की दुनिया में भी संबंध है, ऐसी आत्माएं जो हैं, तो जन्म जन्मांतर की संबंधी हुई ना, तो वो आत्माएं जल्दी पहचानेंगी कि दूसरे जल्दी पहचानेंगे जो संसर्ग संपर्क संबंध में कम आए होंगे, कौन पहचानेंगे? हाँ ज्यादा आए होंगे, तो ये हिसाब बना हुआ है कि जो बीज रूप आत्माएं हैं ना, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब शिव बाप आते हैं तो नंबर वार संसर्ग संपर्क संबंध में आती जरूर है और मिलती है, अनुभव करती है, उनके अलावा जो और हैं वो भी नंबर वार है, कोई जड़ों के रूप में है लेकिन जड़ों का कनेक्शन सीधा उनकी बुद्ध रूपी आत्मा को सीधा कनेक्शन होगा या बीज के द्वारा होगा? जड़ों का कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ बीज के द्वारा होगा या सीधा कनेक्शन हो जाएगा? हाँ बीज के द्वारा होगा। ऐसे ही जो तना है सच्ची रूपी वृक्ष का और जो डालियां हैं है? और जो पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, ये दुनिया में चीजें हैं ना जड़, इनके मानिंद इनका उदाहरण देने लायक कोई चैतन्य आत्माएं भी होंगी ना, तो वो सभी चैतन्य आत्माएं है ना, तो कोई तो बीजों के डायरेक्ट कनेक्शन में आती है, कोई जड़ों के कनेक्शन में आती है, क्या कोई तने से निकलती है, क्या तना है ना जो डालियां निकलती हैं ढेर सारी वृक्ष में, तो मोटा तना होता है उसमें से निकलती है, तो उनका सीधा कनेक्शन किससे होता है? तने से होता है, जड़ों से तो नहीं होता। हाँ एक वृक्ष है, कौन सा? बरगद का वृक्ष, बड़ा, बड़ा माने बाड़ा है, जैसे कलकत्ते में है ना बनियन ट्री, कितनी ढेर जमीन में फैला हुआ, तो वो वृक्ष ऐसा जरूर है कि उसकी ऊपर से कुछ शाखाओं में से कुछ नीचे गिरती हैं, हैं जड़ों जैसी, और वो जमीन में जड़ पकड़ लेती है, तो वो उनका पार्ट ही ऐसा है, क्या शुरुआत में कि जब बरगद का पेड़ परिपक्व हो जाता है तब जब बड़ा हो जाता है परिपक्व भले वृद्ध हो जाता है तो भी वो ऊपर से आती है और नीचे एकदम गिरती है जाकर के जमीन में, जड़ तो मई जमीन में, समझ में आया? वो बीज सबसे ऊंची थी ऊंची, जहां वृक्ष में ऊपर बीज लगता है पहले नीचे फिर ऊपर, तो बीज और रूप आत्माएं जो हैं वो सच्ची रूपी रंगमंच पर लगातार पार्ट बजाती हैं, जड़ों के साथ भी, तने के साथ भी और डालियों के साथ भी, उनका कनेक्शन तो रहता है लेकिन कोई देख नहीं पाता है? तना देखता है, जड़ देखती है? नहीं देख नहीं पाता, तो शास्त्रों में लिख दिया है कि वो जो बीज रूप आत्मा है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहती है, न जन्म लेती है न मृत्यु होती है, वो कैलाश पर्वत पर रहती है, ऐसे शास्त्रों में लिखा ना। अब ऐसे नहीं है कि कोई कैलाश पर्वत पर रहे, कहाँ रहती है? बीज रूप आत्मा है तो बीज रूप आत्माओं के साथ है, है? जब भगवान इस सृष्टि पर आया होगा तो उसका जो दिल और दिमाग मिला होगा तो बीज रूप आत्माओं के साथ मिला होगा कि दूसरों के साथ मिला होगा? हाँ, बीज रूप आत्माओं के साथ मिला, वो उनका परिवार हो गया ना, तो बीज रूप आत्माओं के साथ संगम युग में मिलता है। हाँ, और जन्म जन्मांतर भी बीज रूप आत्माओं के साथ ही रहता है क्या? और वो बीज रूप आत्माएं जो है इस सृष्टि में सबसे ऊंचा ही पार्ट बजाएंगी, औरों के मुकाबले, जड़ों के मुकाबले, तनों में जो होते हैं, डालियों के मुकाबले, पत्तों के मुकाबले, कि नीचा पार्ट बजाएंगे, ऊंचा ही पार्ट बजाने वाले, क्योंकि क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप शिव के हैं, पहचानने वाली आत्मा है। बीज बीज को पहचानेगा कि नहीं? आत्मा है शरीर, शरीर रूपी वृक्ष का बीज है, है? तो जो मनुष्य सृष्टि है इसका जो बीज है, है? उस बीज में वो बीज रूप आत्माएं जब प्रलय होती है, महाविनाश होता है, तो उस बीज में तिरोहित तो हो जाती है। इसको गीता में लिखा है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा ने बोला है? एक अक्षर लिख दो। अरे भाई, इतनी देर लगाते हैं। है? हाँ, शिव बाप में समाजा। अरे मन से सृष्टि के बाप में समाजा। शिव बाप में कौन समाएगा है? शिव बाप में कौन समाएगा? पूरा पूरा 100% शिव बाप में कौन समाएगा? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम, एडम, आदिदेव, शंकर, वो ही एक आत्मा है जो 100% उसमें समा जाती है और सुप्रीम सोल बाप के समान बन जाती है। ऐसे नहीं कि सारी आत्माएं, चाहे बीज रूप हो, जड़ आधार मूर्त हो, है? या तने में पलने वाली हो, या डालियों के रूप में हो, पत्तों के रूप में हो, छोटी मोटी डालियों पर संप्रदायों के रूप में हो, नहीं, वो तो सारे वृक्ष का एक ही मूल रूप में बीज है, जो बीज डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप में मर्ज होता है। कैसे मर्ज होता है? बुद्धि से भी, मन से भी, और इंद्रियों की ताकत से भी। जड़ इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, उनकी सारी शक्ति मन में समा जाती है ना? और मन की सारी शक्ति, मन के ऊपर कौन कंट्रोल कर लेता है? बुद्धि। जो भी इंद्रियां हैं, जो भी मन है, उन सबको, दसों इंद्रियों और ग्यारहवां मन को कौन कंट्रोल करता है? जो शिव सुप्रीम सोल की आत्मा है ना, वो हाँ, वो उस आदम में प्रवेश करके जो राजयोग का ज्ञान सुना सिखाती है, उस राजयोग की शक्ति से वो एडम जो है पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने मन को अपनी बुद्धि में कंट्रोल करता है, तिरोहित कर लेता है, मन मर्ज हो जाता है। क्या ज्यादा सूक्ष्म, बुद्धि या मन? हाँ, हाँ बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि क्षीण है। तो जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो या तो ज्ञान सीख करके राजयोग का पुरुषार्थ करके वो जा रहा है, हाँ पुरुषार्थ करके अपने मन रूप को, मन रूपी घोड़ा को अपने बुद्धि में तिरोहित करते। क्या जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो मन को क्या करते हैं, चंचल मन है ना, उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं? तो जो कंट्रोल करते हैं वो ही प्योर बीज रूप आत्माएं हैं। कितनी? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख आत्माएं जो हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनका शरीर कहीं न कहीं इस सृष्टि पर रहता जरूर है, जड़ शरीर। और वो उस शरीर में से जो आत्मा है बुद्ध रूपी, वो निकल के कहां जाती है? सबकी आत्माएं कहां चली जाती है? परमधाम चली जाती, परमधाम चली जाती, हाँ परम ब्रह्म में चली जाती। क्योंकि फिर भी तो इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म लेना है कि नहीं है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही जन्म लेना है, तो अम्मा में ही जाएगी आत्मा कि बाप में जाएगी? है अम्मा में ही जाएगी। और अम्मा जो है वो बाप के साथ कंबाइंड हुई होती है या अलग होती है? कंबाइंड होती है। अम्मा जो है, जो परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना और गर्भ माने जिसमें गर्भ डालता है। कौन कौन देखो, कौन डालता है गर्भ? इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। शिव बाप थोड़े ही गर्भ डालता है जो सृष्टि पैदा हो जाए। साकार सृष्टि होती है, साकार सृष्टि में साकार सृष्टि बनाने के लिए साकार व्यक्ति ही चाहिए ना, है? तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है, जो आदि सो प्रजापिता? तो वो खुद ही पिता है सृष्टि रूपी रंगमंच का। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं हैं क्या, वो अंत समय में किसको याद करती है? एकदम जब शरीर छोड़ेंगी किसको याद करेंगी? हाँ अब नाम के आधार पर काम बताना पड़े। फिर राम कहा जाता है, लिख के दिया राम, तो राम कहा जाता है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। तो 4.5 लाख आत्माएं जो पक्के योगी बनती हैं, अपने को बीज रूप आत्मा समझते हैं और स्थिर होते हैं उस स्वरूप में, तो वो राम की आत्मा कहो, एडम आदम की आत्मा कहो, अर्जुन की आत्मा कहो, उस आत्मा के पूरे ही कंट्रोल में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। कैसे? जैसे राज्य में जितनी प्रजा होती है, महामंत्री सेनापति से लेकर के और जो भी प्रजा वर्ग है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किसके अंदर में आ जाते हैं? राजा के अंदर में। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़ा योगी ईश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर है, वो साकार स्वरूपधारी शंकर जिसे कहें, आदम एडम, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं अंत में सब। क्या कि शिव के कंट्रोल में रहते हैं।
शिव के कंट्रोल में नहीं, शिव अपने को किसी को कंट्रोल करता नहीं अपने द्वारा।
क्या
वो सिर्फ एक को कंट्रोल करता है पूरा? क्यों कि और जो विशेष है नामधारी ब्रह्मा कहे जाते हैं, जिन ब्रह्मा में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है, विद विद माने जिससे जानकारी वेद बनते हैं, वो चार ब्रह्मा हैं जिनके मुख चार ओर दिखाए गए हैं चार दिशाओं में। वो चारों ही ब्रह्मा जो हैं वो सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले पहचानते हैं कि जो ऊर्ध्वमुखी है वो पहले पहचानता है, ऊर्ध्वमुखी पहले पहचानता है। तो इसलिए ये शिव बाप आत्मा रूपी जो बुद्धि मन बुद्धि है उनकी रेस कराता है। क्या जो दुनिया में रेस प्रसिद्ध है, क्या हॉर्स रेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, घोड़ों की घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ होती है तो जो फर्स्ट आता है, है? उसको फिर इनाम दिया जाता है। तो शिव बाप क्या इनाम देने आए हैं? ये घुड़दौड़ क्या जो परंपरा चली है दुनिया में चल रही है, किसने शुरू की? हाँ, वही सुप्रीम सोल बाप ने शुरू की। हाँ, विश्व की बात राई देते हैं। जो आत्मा रूपी अश्वों की दौड़ में सबसे आगे दौड़ करके शिव बाप को टच कर लेता है। दौड़ होती है तो टच किया जाता है, तो वो विश्व का बादशाह बनता है। शिव बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह कोई भी, जो अपने फॉलोअर्स को जिसने विश्व की बादशाही दी। प्रयास बहुतों ने किया है, क्या एकदम लगभग 2,500 साल पहले किसने प्रयास किया? नहीं मालूम? हाँ, सारी दुनिया को जीतने का प्रयास किया। उसका नाम इब्राहिम था, वो तो धर्म स्थापक था, वो तो जानता ही नहीं राजा ही क्या होती है। भारत में किसने आक्रमण किया था लास्ट में आकर के, और किसकी ताकत से किया था? जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में जो सेना होती है उसका मुखिया कौन होता है? सेनापति होता है ना, होता है कि नहीं? तो शिव बाप आते हैं तो किसी को सेनापति बनाते हैं कि नहीं? किसको बनाते हैं? सेना का मार्शल कौन? हाँ, शंकर। तो 2,500 साल पहले जो विश्व विजय करके करने के लिए निकला था, लास्ट में भारत में आया तो उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर राजा था कि उसके ऊपर भी कोई था? है, उसके ऊपर कोई था? है, वो जब हार गया, हार गया ना, नहीं हारा, जीत के गया हिंदुस्तान को, अरे थक गया तो हार गया ना, थक गया तो जो ज्यादा थक जाएगा लड़ते 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 तब चारों होना चित्त गिरेगा कि नहीं, तो हार गया ना। हा? तो बताया कि दुनिया में कोई भी धर्म का फॉलोअर ऐसा नहीं हुआ, 2,500 साल की हिस्ट्री है मनुष्यों के पास, आज तक भी सबसे बाद वाला कौन था? नेपोलियन, हिटलर। कौन था मालूम है? नहीं मालूम? हाँ, तो प्रयास तो बहुत किया लेकिन लेकिन सफलता किसी को नहीं मिलती। तो ये नियम है कि राजयोग के सिवाय इस दुनिया में, राजयोग सीखने के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। अच्छा, विश्व की बादशाही तो क्या जन्म जन्मांतर की भी राजाई नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि राजाई की पढ़ाई सिवाय शिव बाप के जो ज्ञान के, जिसे गीता ज्ञान कहते हैं, जिसे राजयोग सीखने में आता है, राजयोग सीखे बगैर कोई भी विश्व में राजा हिस्ट्री में बना ही नहीं है। ये जन्म जन्मांतर की राजाएं किसने बनाए? सुप्रीम सोल शिव बाप ने ही बनाए। जो सुप्रीम सोल शिव बाप आकर के शिव बाबा कहे जाते हैं, माने साकार तन में प्रवेश करते हैं तब कहे जाते हैं शिव बाबा। तो वो एक व्यक्तित्व तो है या दो पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी पर्सन एक है ना, अंग्रेजी में कहते हैं पर्सन, हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्ति, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई पड़े वो व्यक्त, आंखों से दिखाई न पड़े तो अव्यक्त, ऐसे कहते हैं। उर्दू में कहते हैं शख्सियत, शख्स। तो वो एक ही व्यक्तित्व है लेकिन आत्माएं दो काम करती है। एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर काम करने वाली परमानेंट, और एक आत्मा टेम्परेरी। वो सिर्फ 100 वर्ष उस शरीर रूपी रथ में काम करती है, उसके बाद परमधाम आत्माओं के लोक में वापस जाती है। कैसी आत्माओं के लोक में? चाहे वो कमजोर आत्माएं हो और चाहे वो पावरफुल आत्माओं का ग्रुप हो। ऐसे नहीं कि सब एक जैसी कमजोर होती हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वो जो आत्माएं ऊपर रहती हैं, जहां सुप्रीम सोल बाप शिव सदाकाल रहता है, वो अनराइटियस है। क्यों? क्योंकि राइटियस बाप को पूरी रीति पहचानती नहीं है। क्या? शरीर रहते रहते, अपना शरीर रहते रहते पूरा नहीं पहचान पाते। हाँ, जो विधर्मी है ना, विदेशी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, वो देवताओं को तो मानते नहीं। मानते हैं? नहीं मानते। देवताएं तो साकार हुए, तो उनकी बुद्धि में ये भी नहीं है कि जो अल्लाह मियां है, गॉड फादर है, वो कोई साकार होता है। है उनकी बुद्धि में ना, वो निराकार मानते हैं। तो फिर इस दुनिया में जब वो दूसरे धर्म वाली आत्माएं हैं, वो किसी का आसरा लेती हैं कि नहीं कुछ काम कराने के लिए? देव आत्माएं हैं, वो जन्म लेते लेते नीचे गिरती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग में दैत्यों की दुनिया में आती हैं, तो नीचे गिरती हैं, तो वो तो देवताओं को याद करते हैं, देव आत्माओं को याद करते हैं, या तो भगवान को याद करते हैं। गुरु की बुद्धि में है कि बड़े से बड़ा देवता महादेव, और फिर उसमें जो बड़े से बड़ी ताकत है वो है सदाशिव। शंकर को तो सदाशिव नहीं कहते, वो साकार निराकार दोनों को मानते हैं, और जो दूसरे धर्म वाले हैं वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो सवाल ये है कि वो अपने जीवन में जो काम होते हैं बड़े बड़े, वो करने के लिए किसको महत्व देते हैं? इस सृष्टि पर उनको कुछ काम करने वाला, उनकी सिद्धि देने वाला, सफलता देने वाला कोई होता है या नहीं होता है? कौन?
गुरु होते, धर्म पिता हो। अरे वो भूत प्रेतों को मानते हैं कि नहीं, दूसरे धर्म वाले, विदेशी भी स्वदेशी भी, और वो उनका काम सिद्ध करते हैं या नहीं? हाँ सिद्ध। तो उनमें जो बड़े से बड़ा है जबराइल, क्या जबरदस्त आयल, कैसा आयल, आयल ऊर्जा होती है ना, तो वो तो जड़ ऊर्जा है। वास्तव में षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो जबरदस्त भूत प्रेतानी आत्मा है वो है जो सुप्रीम सोल बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो गीता ज्ञान सुना के काम अपना सार रूप में बीज डाल के काम पूरा करते हैं कि नहीं है? और उस सार बीज को जो ज्यादा ग्रहण करती हैं आत्माएं, वो हो गई बीज रूप आत्माएं रुद्राक्ष के मन के रुद्र, क्या हाँ 4.5 लाख हो विशेष आत्माएं जो शरीर से सृष्टि पर रहती हैं, हाँ तो उनके अलावा वो आत्माएं उन बीजों से जो जड़ें निकलती हैं, तो वो बीज ज्यादा पावरफुल या जड़ें ज्यादा पावरफुल, बीज ज्यादा पावरफुल, तो वे बीज रूप आत्माएं ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करती हैं बीज रूप राजयोग सीख करके कि वो जड़ों वाली आत्माओं को कंट्रोल कर देती हैं, क्या हाँ उन जड़ों में से जो सबसे पावरफुल जड़ है वो है कौन, हाँ वो है दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। कैसे पावरफुल बन गई, कैसे पावरफुल बन गई 100 साल के संगम युग में, है पहली रचन, पहली रचना, पहले वो दो माताएं हैं वो पहली रचना हुई या ये रचना हो गया, शिव जिनके बीच में आते हैं है? एक सुमकर रथ में प्रवेश करते हैं, फर्स्ट क्लास रचना, फर्स्ट क्लास रचना, अरे जो पहले ज्ञान में आएगी वो फर्स्ट क्लास रचना नहीं, जगदम्बा पहले आती है, ज्ञान बीज रूप आत्मा का प्रैक्टिकल में पहले जगदम्बा धारण करेगी या जो स्थूल में जड़ बनती है वो बनेगी, दुनिया भर की ये भारत लिख रहे, वो जो फर्स्ट रचना ये फर्स्ट क्लास रचना, वो फर्स्ट रचना ये फर्स्ट क्लास रचना, जो सुप्रीम सोल बाप के पहले कनेक्शन में आएगी है तो वो फर्स्ट क्लास नहीं, क्यों, इसलिए नहीं कि वो दोनों आत्माएं जो फीमेल के रूप में थी वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या नहीं है, या स्त्री चोला है या पुरुष चोला है, हैं चोला जेंट्स या फीमेल, हाँ फीमेल है ना, फीमेल है का मतलब ये है कि देहवान वाली है या आत्मा विमान वाली है, ज्यादा क्या है देहवान, तो वो देहवान के कारण हो दोनों आत्माएं जो है, जो पार्ट खुलता है ना ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के साक्षात्कारों का, तो उनकी बुद्धि में पक्का बैठता है, क्या अरे ये तो सत्युग में क्या बनेगा, कृष्ण बच्चा बनेगा है,
और शास्त्रों में तो कृष्ण की बड़ी महिमा है, वो ही भगवान है, वो ही गीता का भगवान। तो बस क्या किया, बुद्धि किधर खिंच गई, उसी तरफ खिंच गई। और फिर देवान है तो गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा है, धनी वाली व्यक्ति तो है कि नहीं। तो वो जो माता ज्यादा बड़बोली थी, दिमाग से नहीं बड़बोली थी, हा तो हो बड़बोली। आज जब दुनिया अंत होता है तो सारी दुनिया बड़बोलों के प्रभाव में आ जाती है, या जो बुद्धिमान होते हैं उनके प्रभाव में आती है। किसके प्रभाव में आती, जो बड़बोले होते हैं ना, जैसे आज है? आज की दुनिया में भारत में कौन बड़बोला, नरेंद्र मोदी, बढ़िया भाषण करता है तो लोग एकदम प्रभावित हो जाते। ऐसे ही उन दोनों माताओं में जो जगदम्बा नाम से प्रसिद्धि होती है ना, सरस्वती जगदम्बा के रूप में है, वाक देवी, वाचा की देवी, तो वो वाचा की देवी के प्रभाव में वो दूसरी माता भी आ जाती है। ये हिसाब है। तो दोनों माताएं तो कहां से किधर चली गई, दादा लेखराज ब्रह्मा के कंट्रोल में। वो भागे जब बबंदर मचा ना ओम मंडली में, झगड़ा हुआ था ना, कोर्ट कचहरियां होने लगी है, और दुनिया भर का मारामारी भी हुई है। जो जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल बाप ने प्रवेश किया था उसकी लाश को भी गुम कर दिया। तो अब कौन रह गए, अब त्रिमूर्ति में कौन रह गए, और किसको मुखिया मान लिया, पहले पहले तो वो माताएं ही मुखिया के रूप में रहती हैं, है? उनमें ही शिव बाप प्रवेश करते हैं। फिर जब वो माताएं शरीर छोड़ देती हैं तो कौन रहेगा, दादा लेखराज ब्रह्मा। उनकी बुद्धि में वो जो सारा ज्ञान बैठता है ना, जो सवेरे को बैठ करके लिखते थे बाप उन माताओं के द्वारा लिखाते थे, तो वो ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा। तो उन्होंने बस उनका नाम पड़ गया बेहद का, क्या जिन्ना, क्या नाम पड़ गए, जीत नाम, जीत लिया ना, जीत लिया कि हार गया, दादा लेखराज की आत्मा जीत गई कि हार गई, अरे बताओ, अरे क्या हुआ प्रैक्टिकल में, हाँ जीत गई, तो उसका नाम पड़ गया जिन्ना बेहद। तो हाँ जिन्ना ने लड़के लिया ना, तो लड़के ही लिया, कैसे लड़के लिया, हाँ ऐसे नहीं लिया, पाकिस्तान पहले बना कि जिन्ना ने पहले ये बात रखी कि नहीं हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, कि पाकिस्तान पहले बन गया, हाँ तो वो है पाकिस्तान बनाने वाला मुखिया जिन्न, कौन वो ही जो दादा लेखराज ब्रह्म, उन्होंने बस फिर अपनी संस्था चालू कर दी, क्या अपने ही नाम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो फिर शिव बाप को तो कहीं ना कहीं काम करना ही था, तो उन्होंने देखा जैसे तो हम लोग जानते ही हैं, बाबा ने बताया क्या निश्चय बुद्धि विजय थी। तो साक्षात्कार तो उन्हीं को हुए थे, तो निश्चय बुद्धि कौन हुए? वो तीन आत्माएं निश्चय बुद्धि हुई जिनके बीच में शिव बाप आते हैं, या दादा लेखराज निश्चय बुद्धि हुए? अटल निश्चय हो गया उनको शुरुआत से ही, क्या कि मैं साक्षात्कार हुआ कृष्ण का तो मैं कृष्ण बच्चा बनूंगा, दुनिया का विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे, हाँ भाई विनाश होना है, ये भी बुद्धि में पक्का बैठ गया है ना। ये बुद्धि में पक्का बैठ जाता है कि विनाश होना है तो दुनिया से वैराग आता है कि नहीं, और वैराग आता है तो पुरुषार्थ अच्छा होता है कि नहीं? हाँ पुरुषार्थ तभी अच्छा होगा जबकि दुनिया से वैराग आए। तो दादा लेखराज ने हिम्मत की है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से उन्होंने फाउंडेशन डाला, और शिव बाप ने हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, क्या करें। जो कहावत है ना, मजबूरी वाला महात्मा गांधी, तो ये कहावत कहां से शुरू हुई है? हाँ ये कहावत किसने डाली? फाउंडेशन को नाम लिखो, एक अक्षर लिखो, हाँ शिव सुप्रीम सोल ने ये फाउंडेशन डाला। क्या करे बेचारा शिव सुप्रीम सोल, जिन आत्माओं के बीच में आया पहले पहले वो सारी गायब नदारद, तो कहां जाए है? अरे भाई ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख चाहिए ना, और मुख भी मैच्योर्ड चाहिए, अनुभवी रथ चाहिए कि छोटा बच्चा चाहिए है? ऐसे तो नहीं कि 6-7 साल का बच्चा होगा उसमें प्रवेश कर जाएगा, कब प्रवेश करेगा? नहीं तो जो देखा कि मैं तो किसमें आता हूं, बाण प्रस्थ अवस्था में आता हूं, अनुभवी तन में आता, नजर घुमा के देखा होगा उन्हें अपनी क्या वो जो उनकी जो सूक्ष्म आंख है ना, है कि नहीं? हाँ तो उन्होंने देखा कोई है ही नहीं, तो मजबूरी का ना महात्मा गांधी क्या करे, किसमें चले गए? आप दादा ने क्या आधार पकड़ा? वही हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, दूसरा क्या? निश्चय बुद्धि विजय थे। तो दादा लेखराज ने निश्चय पक्का रहा, भले ओम मंडली टूट गई तो भी निश्चय क्या पक्का रहा कि मैं तो कृष्ण बनूंगा ही बनूंगा, नई दुनिया आने वाली। शिव बाप ने प्रवेश कर लिया और काम शुरू हो गया, नया ब्राह्मणों का संगठन रूपी मकान बनाने का, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा मकान बनेगा ना है? होते 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 कौन सा सन आया? हाँ ये काम तो दिल्ली में ही होना है, भारत में ही होना है कि पाकिस्तान में होना है? कहाँ? पाकिस्तान में होना नहीं, वो काम तो भारत में ही होना है, और भारत में भी जमुना का जो कंठा गाया हुआ है उसी को नई दुनिया की राजधानी बनने का निमित्त बनना है। तो शिव बाप आए, देखा कि ये इस भारत में तो आ गए, पूरा ब्राह्मणों का जो भी संगठन था सिंध हैदराबाद में ओम मंडली में, वो सब इकट्ठे हो गए ब्रह्मा बाबा के साथ, जो भी रहे बचे थे और आ गए। और ब्रह्मा बाबा ने प्लान बनाया कि जो बड़ा धनाढ्य कोई शहर है और ज्यादा क्या नाम भावना वाले भी हैं तो गुजरात है, तो गुजरात की राजधानी में बहुत प्रयास किया, कोई मकान नहीं मिला। और अचानक ही उस समय शायद माउंट आबू गुजरात की राजधानी शहर रहा होगा उस समय, सन 47 में, क्योंकि ये राजस्थान तो बाद में बनाना है, अलग अलग स्टेट्स जो बने हैं, तो वो कहीं नहीं मिला मकान, वो अचानक ही एक बड़ी कोठी मिल गई आबू पहाड़ पर, बस वहीं आ गए उस समय तक, जब तक वहां कोई ठिकाना अहमदाबाद में न मिले। आ तो गए, लेकिन बाबा के दिल में वो बात हटी नहीं, क्या कि फाउंडेशन कहां पड़ना है, बीज कहां पड़ेगा है? बीज उनकी बुद्धि में ही था कि अहमदाबाद में ही कोई बड़ा ठिकाना मिले, तो वो ठिकाना तो नहीं मिला। क्या ये जरूर बताया है अव्यक्तवाणी में कि अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में जो शास्त्र बने हैं, उन शास्त्रों में जो सबसे पुराना सा पुराना ज्योतिर्लिंग दिखाया है वो कहां, कौन सा? सोमनाथ। वो तो गुजरात में ही है। ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में आए, और माउंट आबू में भी 17-18 साल पूरे हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने अचानक, तो वो आत्मा जो आदि वाली थी माउंट आबू में ही आए, क्योंकि अहमदाबाद में तो ठिकाना ही नहीं मिला ना, ये माउंट आबू में आए, बताया ना, बड़ा मकान मिल गया किसी का, तो वहां आके डट गए, और डटने के बाद 16-17 साल ज्ञान सुनाते रहे, कुछ भाग गए कुछ रह गए, जो रह गए उनके द्वारा उन्होंने दिल्ली में भी जमावड़ा जमा लिया शुरुआत से। जब भारत में आए ना, तो माउंट आबू में आने के बाद बुद्धि में आया कि राजधानी तो जमुना की कंठे पे दिल्ली में ही जमेगी, हाँ, पुरानी राजधानी तो दिल्ली ही है, सब धर्मों ने राज्य कहाँ किया, दिल्ली में, तो उन्होंने भी जमावड़ा वहां पहला सेंटर कहा, दिल्ली में है, हाँ, कमला नगर सेंटर खोल दिया। जड़ कमला नगर सो खोला या चैतन्य खोला? जड़ खोला, क्योंकि बुद्धि कैसी है, जड़ बुद्धि है, हाँ, कमला नगर सेंटर चल पड़ा, फिर एक से दो, दो से चार ऐसे सेंटर से खुलते गए। ब्रह्मा बाबा के रहते रहते खूब सेंटर खुल गए दिल्ली में, क्योंकि बाबा ने बहुत ज्यादा दबाव दिल्ली की सेवा पर डाला, तो अचानक शरीर छूट गया, सारा शरीर छूट गया, तो अब शिव को तो अपना काम करना है कि नहीं करना? हाँ करना है, क्या करेंगे क्या करेंगे फिर? हाँ लंदन, अरे वो तो ठीक है, ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा तो जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक जैसे स्वर्ग की शूटिंग होती रही है ना, लेकिन जब शरीर छूट गया तो जो धर्म पिता चला जाता है, तो धर्म पिता के बाद जो फॉलोअर्स गद्दी नशीन बनते हैं वो नीचे गिराते हैं पब्लिक को, फॉलोअर्स को ऊंचा उठाते हैं, वो ही नीचे गिराते हैं, तो बस जो गद्दी पे बैठे उन्होंने फिर अपने अपने मत मतांतर शुरू कर दिए, अलग अलग जोनल इंचार्ज बन गए, उनमें जोन का इंचार्ज किसी को बनाया गया, अहमदाबाद में भी गुजरात में भी सबसे लास्ट में, सभी जगह स्टेट्स में मुख्य मुख्य सेंटर खुल गए। तो जो तो बाबा ने कहा ये दुनिया क्या है? है ये दुनिया जंगल है, जंगल कांटों का है, दुखदाई कांटे भरे पड़े हैं, इसे कोई जन्नत का बगीचा नहीं कहेंगे, वो जन्नत का बगीचा तो हेवनली गॉड फादर ही आके बनाते हैं, मनुष्य गुरु जब से इस दुनिया में आते हैं धर्म पिता बन करके, तो इस दुनिया को क्या बना देते हैं, कांटों का जंगल बना देते हैं, तो कांटों के जंगल में ब्रह्मा बाबा अभी तक थे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो दूसरा शेर भी आएगा या नहीं आएगा है? तो जिस साल उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, उसी साल के लास्ट में क्या, कौन से साल में शरीर छोड़ा मालूम है? हाँ 69, उसी साल के लास्ट में वो शेर जो यज्ञ के आदि में था है, जिसकी लाश को गुम कर दिया था, वो ही आत्मा बड़ा शरीर लेकर के आ गई या नहीं आ गई षष्ठी रूपी रंगमंच पर। और दादा लेखराज ने जो ज्ञान सुनाया था, मुख से सुनाया था ना, तो उसने उस ज्ञान को ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्योंकि वो पुरानी आत्मा है, ब्राह्मण बनी थी यज्ञ के आदि में, बनी थी कि नहीं, किसके द्वारा ब्राह्मण बनी थी? ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद होता है, है? अरे जिसमें प्रवेश किया वो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ने तो जिसमें प्रवेश किया वो तो शरीर छूट गया, लाश गुम हो गई आदि वाली, गुम हुई कि नहीं? हाँ, तो फिर वो यज्ञ का आदि का ब्राह्मण जन्म लेके दोबारा आया तो वो फिर वो पहला ब्राह्मण कैसे साबित हो? शिव बाप ने दादा लेखराज में प्रवेश किया तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो कन्या माताओं को पालने के लिए तो ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ चाहिए ना। हाँ, तो जिन तीन के बीच में शिव बाप आए थे उनमें जो बड़ बोली थी ना है, बड़ बोली माता ज्यादा बोलने वाली, हाँ उसमें भी प्रवेश किया और साथ ही साथ उस वो परम ब्रह्म का पाठ बजाने वाली आत्मा आदम वाली पुरुष शरीर उसमें भी प्रवेश किया। ये दो आत्माएं जो हैं, जैसे कि सारे जगत के ऊपर राज्य करने वाली विश्व पिता बनती हैं या नहीं बनती है राजयोग सीखकर, तो कौन चाहिए? जगदम्बा भी चाहिए, जगत का पिता भी चाहिए। तो उस माता में प्रवेश किया जो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजी, भारत में खास पूजी जा रही है। वो जगदम्बा जो है बड़े से बड़ी धरती माता हुई चैतन्य या नहीं हुई है? और चैतन्य धरती माता है तो जगदम्बा माने वाक देवी भी हुई, वाचा की देवी है, जगदम्बा सरस्वती जिसे कहा जाता है, और वो वाचा की देवी बुद्धि में तीखी होगी या वाचा चलाने में ज्यादा तीखी। तो उसने ब्रह्मा बाबा के जो साक्षात्कार सुने थे वो बड़बड़ बड़बड़ करके सारे पुरुष तन के सामने, जो बाबा का शिव बाप का जो मुकर्रर रथ बना ना, तो दोनों रथों में उसने हिम्मत की सुनाने की, बोल बोल करने की, दूसरी माता ने हिम्मत नहीं की, वो डरती थी थोड़ा। क्यों डरती थी? कोई कारण होगा, घंटों लगाएंगे, दासी थी वो, इसलिए डरती थी कि वो जब से पत्नी बन के आई तब से लेकर अंत तक आज्ञाकारी रही है, पति परायण रही या नहीं रही? रही, तो पत्नी का तो धर्म है। इस दुनिया में किसी की साकार से अगर मनुष्य से डरना है तो किससे डरना है? ऊपर वाले से डरना है, साकार में किससे डरेगी? पति, पति माने जो रक्षा करने वाला है, उसकी पवित्रता की रक्षा करे, उसी से डरना है। तो वो डरती थी पहले से। और ये जो दूसरी माता आई है, ओ तो बड़ बोली थी पहले से, वो निडर थी। माँ बाबा ने भले अपनी बहन को आकर के साक्षात्कार सुनाए, क्योंकि उनका लगाव था बड़ी बहन से, बड़ी बहन के रूप में, तो उन्हें हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर हम सुनाएंगे तो ये तो बुद्धिवादी आदमी कौन, उनका पति, तो ये हमारी बात मानेगा नहीं, डांट के रख देगा। जब ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत नहीं की सामने, ब्रह्मा बाबा भी सामने सुना सकते थे ना, उन्होंने नहीं हिम्मत, वो अपनी बहन के, बड़ी बहन के साथ पास पहुंच गए। तो क्या हुआ कि ये वो जो दूसरी माता थी, उसको बता दिया कि तुम भाई सुनाओ, और उसने हिम्मत की, हिम्मत है बच्चे। तो शिव बाप ने, क्योंकि भक्ति मार्ग का भी तो फाउंडेशन पड़ता है ना इस दुनिया में, नहीं पड़ता है इस दुनिया में, ऊंचे से ऊंचा कोई भगत भी होगा अब्बल नंबर का, और ऊंचे से ऊंचा कोई ऐसी आत्मा भी होगी जो बुद्धिवादी हो, तो बुद्धिवादी आत्मा तो आदम, और भावनावादी आत्मा वो बड़बोली माता। तो उसमें प्रवेश करके बड़बोली माता ने तो सारे साक्षात्कार धड़ाधड़ सुना दिए कि ये बात ऐसे ऐसे है, इनको साक्षात्कार होंगे, कोई ने इनका अर्थ नहीं बताया, आपको पता चलता हो तो आप बताइए। तो उनमें तो शिव बाप ने प्रवेश किया हुआ था, है? बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ने, बनारस के विद्वानों ने नहीं बता पाया, वो तो बता तो दिया, लेकिन उन्हें ये थोड़ा ही पता चला कि मेरे अंदर किसे ने बता दिया, पता चला हाँ, वो तो जब आता है कब जाता है, कब जाता है पता ही नहीं चलता। तो ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बैठ गया, निश्चय बुद्धि विजय। तो ब्रह्मा बाबा ने जब हिम्मत की है, संगठन बनाया, उसी समय शिव बाप ने उनमें प्रवेश करके वाणी चलाना शुरू कर दिया। पता कैसे चलता है इनमें शिव, इनमें भगवान बाप बोल रहा है। जब ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जैसा ज्ञान दुनिया में और कोई ने कभी नहीं सुनाया था, तो बस उस संगठन में जो मंडली की आत्माएं थी रही बची, तो उनको निश्चय होने लगा पक्का कि हाँ भगवान हमें मिल गया। और वो आ गए माउंट आबू में, और दिल्ली में जमावड़ा जमाया ईश्वरीय सेवा का। तो 18-20 साल के बाद जब उनका शरीर छूट गया ब्रह्मा बाबा का, तो वो आत्मा जो आदि वाली थी, वो बड़ा चोला लेकर के समझदार बन के कि नहीं, अनुभवी बन के आई के बच्चा बुद्धि बन के आई, अनुभवी बन के आई, और ब्रह्मा बाबा का जो ज्ञान सुनाया हुआ मुख से सुना, तो बुद्धि में बैठ गया। तो फिर तो आत्मा वही आत्मा है शंकर वाली, जिसे कहा जाता है त्रिनेत्री, क्या मनुष्य शरीर धारण करने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और किसी देवता को दिखाते हैं पुरुष रूप में, स्त्री चोले के रूप में दिखाते हैं महाकाली को, लेकिन पुरुष रूप में और कोई चोला नहीं जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र कौन सा? वो ही बुद्ध रूपी नेत्र किससे मिला? शिव बाप से। शिव बाप ने जो ज्ञान दिया वेद, वेद माने ज्ञान, तो वो ज्ञान उसने धारण किया, तो बाप समान बना, ज्ञान में भी बाप समान बना, और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया भी, तो वो राजयोगी बना, योगियों का राजा। वो आत्मा 69 में ज्ञान में आती है, और तो जल्दी पकड़ लेगी कि नहीं?
जल्दी पकड़ लेती है।
उसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला 5 दिसंबर, क्या पहली बार बाप दादा का मिलन हो। तो ब्रह्मा कुमारी यहां तो यही समझती थी कि बाप शिव और दादा ब्रह्मा बाबा। अरे ये देवहन के आधार पर बोला या आत्मिक स्थिति के आधार पर बोला? अरे एक अक्षर लिखो दे, हाँ देवहन के आधार पर बोला। वास्तव में जब सुप्रीम सोल बाप क्या परम पिता है तो उसका बड़ा बच्चा कोई आत्मा होगा कि नहीं? आत्मा ही होगा कि या देह होगा? आत्मा होगा। तो वो एडम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदमी थी दोबारा जन्म लेकर के है ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के संपर्क में आई, तो उसने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस की आत्मा स्थिति में स्थित होने की, वो सफल होने लगी और उसे अनुभव होने लगा कि मैं भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक सितारा, जैसे आसमान में सितारा होता है ना, ऐसे कुछ न कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड टिकना पहले उसने शुरू किया और शिव बाप ने उसमें फिर प्रवेश कर लिया। करेगा कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और फिर उसके बाद 8-10 साल तक वो कोई परमधाम वापस चला जाएगा? नहीं, उसी मनुष्य तन में दोनों का मिलन होगा। किसका किसका? जानकारी लेकर के जिसमें प्रवेश किया उसका भी आत्मा का और शिव बाप का भी। तो ये हो गए असली बाप शिव और दादा शंकर। शंकर माने आत्माओं में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो शिव बाप का इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़ा बच्चा, ये वो ओरिजिनल बाप दादा हो गया। ब्रह्मा कुमारियों को तो पता नहीं, खुद उसको भी पता नहीं। किसको? जिसमें प्रवेश किया उसको भी पता नहीं। बाकी हाँ, ये आत्मिक स्थिति बनना शुरू होने के कारण बुद्धि सूक्ष्म बनना शुरू हुई या नहीं, और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा कि जो अपन को देह के रूप में समझते रहे उनका ज्यादा चलेगा। हाँ, तो आत्मा का मनन चिंतन मंथन खूब चलता है, जो लौकिक पढ़ाई है उसको भी अलौकिक में कन्वर्ट कर देता है। क्या जो भी लौकिक काम करें तो किस में कन्वर्ट करना है ब्राह्मण को? लौकिक काम भी अलौकिक में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट हो जाए? बताया, तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी ताकत कहां लगाना है? वो उसी ईश्वरीय ज्ञान को लेने देने में लगाना है। वो आत्मा क्षिप्र गति वाली बन जाती है पुरुषार्थ में, और बाबा का वाक्य भी मिल जाता है जिसमें बताया था क्या कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष में क्या होगा? लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो जब तक वो 10 वर्ष पूरे होते हैं 1976, तब तक उस आत्मा की बुद्धि में पक्का बैठ जाता है क्या कि मेरा क्या पार्ट है। और जब किसी को सीट मिल जाती है, जैसे कोई IAS का एग्जाम पास करता है, ICS का एग्जाम पास करता है, सीट तो नहीं मिलती साल दो साल, मिल जाती है? नहीं मिलती। तो जब तक सीट नहीं मिलती है तब तक तो उतना नशा नहीं चढ़ता है, चढ़ता है? हाँ। तो तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? प्रभुता पाए काय मदन आए, मद माने नशा चढ़ जाता है। तो बस वो नशा चढ़ गया। क्या नशा चढ़ गया? हाँ? जब बुद्धि में ये निश्चय होने लगा होगा कि मेरा पार्ट क्या है, तो नशा चल गया। और नशा करता है तो काम तेजी से होता है, है? कि धीमे धीमे होता है, है? आ, ये दो लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं दुनिया में, मिलती है। तो ब्रह्मा कुमारियां तो पहले से ही पसंद नहीं करती, करती होंगी, बिल्कुल नहीं करेंगे। शास्त्रवादियों को तो वो और ही ज्यादा पसंद नहीं करती, क्यों? वो उनका कहना है शास्त्र सब झूठे, बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ही सच्चा। तो ये बात पचती नहीं दिमाग में, किसको है, किसको नहीं पचती? हाँ, क्योंकि हाँ वो जो आत्मा ब्रह्मा बाबा के बाद शिव बाप जिसे अपना आधार बनाते हैं, यज्ञ के आदि वाली वही आत्मा मुकर्र रथ, तो वो ज्ञान का युद्ध है, वो करने के लिए तैयार रहेगी या नहीं रहेगी, है? या डरपोक बन के बैठ जाएगी? हाँ, तो वो अपना काम शुरू कर देती है। हाँ, बाप ने बताया क्या कि जो युद्ध होते रहे दुनिया में, हिस्ट्री में सालों साल युद्ध होते रहे, तब राजाई मिली या एकदम चढ़ाई की और राजाई मिल गई? हाँ, जितनी बड़ी राजाई उतना बड़ा फिर युद्ध भी करना पड़े। तो बाबा ने कितना टाइम बताया है? हाँ, 450 साल। कितना टाइम बताया? हाँ, 5 साल। क्या 5-year plan बनाती है ना गवर्नमेंट? तो शिव बाप का ये 5-year plan पहले से किसी ने फाउंडेशन डाला होगा ना, ऐसे ही इन्होंने 5-year plan बनाना शुरू कर दिए। तो शिव बाप का ये 5-year plan पहला है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो 5-year plan वो दिखाया, कैसे दिखाया? सीढ़ी के चित्र में नीचे बैगर पड़ा है ना, भारत, उसके सर के नीचे गीता रखी हुई है, गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान ही उसका शस्त्र है। क्या? उस शस्त्र का आसरा लेकर के वो आत्मा पहले ही ज्ञान में सुन चुकी, ब्रह्मा कुमारियों में जब पढ़ती थी सुनती थी क्या कि यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया। सुना कि नहीं सुना? है? राम फेल हो गया तो उसको क्या मिल गया? धनुष और बाण शिव बाबा ने दे दिया, जाओ बेटा तुम फेल हो गए तो जाओ कमाओ और खाओ। बड़े बच्चा हो गए ना, बड़े बच्चा हो तो तुम कमाओ और खाओ, और तुम अगर अच्छे से कमाई करोगे तो तुम जो तुम्हारे छोटे भाई होंगे ना उनसे तुम ज्यादा कमाई कर लोगे, तुम कम करोगे ज्यादा ही कर लोगे। बात बुद्धि में बैठ गई, बात तो बड़ी बढ़िया है। अब ब्रह्मा कुमारियों ने डाउन करना शुरू कर दिया। क्या क्या कह के? अरे राम तो फेल हो गया। पूछा जाए तो क्लास में, राम बनना है कि कृष्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना? तो सब हाथ उठा देते हैं, नारायण बनना है, कृष्ण बनना है। गुस्सा आती थी ठीक है। और भी हमारे साथ और भी भट्टी में आए हुए थे। क्या? एक भट्टी पर चलती थी ना, तो ऑल इंडिया से कुमारों को इकट्ठा किया गया था, कुमारों की भट्टी हुई। उस भट्टी में एक बार प्रश्न रखा गया कि भाई बात रखी कि प्रश्न करो और दीदी दादियां जवाब देंगी। तो वो क्लास चल गया और प्रश्नों की व्यवसार हो गई और ब्रह्मा कुमारियां लड़खड़ाने लगी। दूसरे दिन से उन्होंने क्लास बंद कर दिया, क्लास ही नहीं किया। चलो बत्ती पूरी हो गई, अच्छे अच्छे बड़े तीखे तीखे कुमार आए हुए थे। तो अब बाबा ने तो बोला हुआ है क्या, बाद में क्या बोल दिया बाबा ने? बाबा ने बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते। क्या अगर कुमारों के लिए नहीं बोला, कुमारियों के लिए नहीं बोला, अगर कुमारियों के लिए भी नहीं बोला, किसके लिए बोला? कुमार जो चाहे सो कर सकते। तो और ही पावर मिल गई कि हाँ भाई बाबा ने हमारे लिए बोला होगा। बुद्धि में बात आएगी नहीं तो आप कुमार चाहे तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं दुनिया का, और चाहे तो क्या कर सकते हाँ दुनिया का निर्माण भी कर सकते। भाई वो युद्ध चालू रहा कितने साल? हाँ 76 में प्रत्यक्षता वर्ष घोषित हुआ और 77 को संपूर्णता वर्ष बताया, और 78 से गिन लो 5 साल, 78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83 क्या 83 में अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया 83 सन चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। तो वो 83 में जो अव्यक्त वाणियां है ना, वो सारी कन्याओं को उठाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य चले। तो वो पंजाब के खून की कन्या निकल पड़ती है। पंजाब में जो इबादत घर बने हुए हैं सिखों के है, वहां क्या होता है खास? 24 घंटे वो वाणी चलती ही रहती है, यादगार है वाणी जयराम की है। तो वो पंजाबी खून की आत्मा निकल पड़ती है और अव्यक्त बाप दादा भी बोल देते हैं क्या है? पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे फर्स्ट नंबर में गई। अरे हमें चंद्रमणि दादी याद आई है। अरे चंद्रमणि दादी तो इतनी सेवा करती है, वो तो बहुत पहले से सरेंडर हुई है, ये बाबा ने अब क्यों बोला? क्या क्या बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो बात समझ में आएगी कि नहीं? हाँ तो बस फाउंडेशन जमना था तो 83 में फाउंडेशन जम गया और मुरली में पॉइंट भी आ गया। क्या क्या आ गया? बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में से वो शब्द हटा दो और क्या लिख दो? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दो। बस दिमाग में आई बात और फटा से बाहर दीवार पे लिख दिया गया आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, फाउंडेशन पड़ गया। तो बात बताई कि यज्ञ की आदि में जो तीन आत्माएं थी वो फिर अंत में भी होंगी या नहीं होंगी? हाँ एक तो लक्ष्मी नारायण जिनके लिए बोला 76 में प्रत्यक्ष होंगे हैं, और दूसरा दूसरा वो आत्मा जो निमित्त बनती है धरणी माता। धरणी माता माने अरे राज्य किसके ऊपर किया जाएगा? धरणी के ऊपर ही राज्य किया जाएगा ना, इसलिए शंकर का एक नाम शास्त्रों में भी है धरणीश्वर। क्या? धरणी का ईश्वर। अर्जुन को भी क्या नाम दिया? प्रथु राजा हुए उनकी जो पालतू कन्या थी उसका नाम प्रथा हुआ और प्रथा का बच्चा अर्जुन उसका नाम पड़ा पार्थ। उसका अर्थ होता है पृथ्वी का राजा। क्या? तो देखो अर्जुन भी पृथ्वी का राजा और शंकर भी विश्वनाथ कहा जाता है, है? और उनका जो पूर्वी सभ्यता की यादगार है पूरी सभ्यता की यादगार क्या है? विश्व के लिए जीना है, सारी विश्व आत्माओं के लिए जिंदा रहना है, है? कि अपने लिए जिंदा रहना, अपने शरीर की परवरिश के लिए जिंदा रहना, काहे के लिए? भारतवासियों का क्या ध्येय है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। सन्यासी लोग है ना, वो भी जब कथा करेंगे ना, प्रवचन करेंगे, तो अंत में ये बोलेंगे जरूर, क्या? हाँ, तो ये नारा है भारत का, तो उस नारे को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए जो यादगार बनी हुई है, वो कौन सी यादगार है? सब कैसे सुखी होंगे, क्या संकल्प करने से सुखी होंगे? क्या लिखा पागल खाना क्या? हाँ, जगन्नाथ। हाँ, ये जगन्नाथ जो है ना, वो पूरब में है, भारत के पूरब में जगन्नाथ है, और जो प्रदेश है वो गरीबों का देश है या बम्बैया वाले रईसों का देश है? है गरीबों का देश, तो वो गरीबों के देश में वो यादगार बनी हुई। बाकी कोई स्टेट की बात नहीं है, माने सारे भारत में जो गरीब गरीब आत्माएं है ना, क्या कोई करोड़पति लखपति नहीं है, जो ज्ञान में चलने वाले हैं, एडवांस ज्ञान में, जो शिव बाप के डायरेक्ट रूबरू ज्ञान लेने वाले बच्चे बनते हैं, है? वो कोई भी ऐसी नहीं है। तो उन बच्चों के बीच में कैसी आत्मा है? उस स्टेट का नाम क्या रखा? उड़ीसा। पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो ऐसा उड़ी जो कोई उनको, फिर उन आत्माओं को दुनिया में पकड़ ही नहीं सकता। पकड़ने की क्या बात? अरे जब लड़ाई होती है ना दो देशों में, दुश्मनों में लड़ाई होती है ना, तो जो लड़ाई करने वाले जो सेनापति होते हैं दोनों तरफ के, पहले क्या करते हैं? कोशिश कि राजा को, सेनापति को पकड़ के बंदी बना ले, यही कोशिश करते हैं ना। हाँ, तो बस यहाँ की जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है ना, प्रजातंत्र राज्य, जो प्रजा के रूप पर बना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, भगवान ने तो नहीं बनाया, वो राजा ही भगवान ने बनाई, क्या भगवान ने तो नहीं बनाई, तो वो जैसे कि दुश्मन हो गए, भगवान के दुश्मन हुए या दोस्त हुए? भगवान ने राजा ही सिखाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा की, है? और इन्होंने क्या किया? इन्होंने नास्तिकों ने, नास्तिक ही था ना प्रजातंत्र शुरुआत करने वाला, कौन था? नास्तिक था। लेनिन क्या था? नास्तिक था ना, फिर भी कंट्रोलिंग पावर तो थी ना उसमें, उसको ढेर लोगों ने फॉलो किया ना। हाँ, तो वो लेनिन ने भी किसी ने प्रवेश किया होगा ना, नहीं? हाँ, तो जिसमें भी प्रवेश किया वो आत्मा भी देवी देवता सनातन धर्म की होगी या नहीं होगी? हाँ, तो भले प्रजातंत्र राज्य चला, कंट्रोलिंग पावर तो मिलेगी नहीं है, तो वो आत्मा कंट्रोल करने वाली प्रजातंत्र राज्य में भी सबसे पावरफुल आत्मा होगी, प्रजातंत्र राज्य के फाउंडर्स के बीच में, और साधारण होगी, साधारण जीवन जीने वाली होगी, कि ठाट वाट का जीवन जीने वाली होगी, मजदूरों की तरह जीवन जीने वाली होगी, वर्कर्स की तरह जीवन जीने वाली होगी, वर्कर्स के बीच में काम करने वाली होगी, या बड़ा कोई साहूकार होगी, है? बड़ा साहूकार नहीं, यही तो खास बात है, क्या? कि जितने भी धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म के धक्के खाते हैं ना, तो बड़ा आदमी होगा दुनिया का तो धक्के खाएगा नहीं। वो लेनिन ने भी किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है और सादा जीवन ही जीता था, और जो सादा जीवन जीता है वो दूसरों के लिए मरता है या नहीं? तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, सब स्वाहा। क्या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो शब्द आया था क्या, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस माने त्याग। तो वो आत्मा जो है प्रजातंत्र राज्य में भी कंट्रोलिंग पावर देती है कि नहीं लास्ट, लेकिन बाप का जो बच्चा तो है वहां तो जाएगी, कहां रूबरू ज्ञान लेने में जाएगी कि नहीं? लेकिन संस्कार कैसे होंगे, नास्तिक के कि आस्तिक के, अंदर से विश्वास बैठ के ही चलेगी या विश्वास नहीं बैठेगा, जल्दी नहीं बैठेगा। तो वो आत्मा जो है निमित्त बन जाती है, निमित्त बन जाती है, लेकिन बाप तो शिव बाप तो, नाम क्या है, शिव माने कल्याणकारी, और जैसे मैं प्रवेश करता है उसको भी धीरे धीरे क्या बना लेता है, वो तो जन्म जन्मांतर दुश्मनों से लड़ाई लड़ता रहा, कोई थोड़ा गड़बड़ करता है बस अपना छात्र तेज दिखाई दिया, लड़ाई करके चाहे कोई भी आ जाए, अलेक्जेंडर का बाप आ जाए, वो तो नीचा दिखाने की स्वभाव वाली है ना, तो एकदम कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, बाबा के सुनाए हुए ज्ञान के अनुसार बन जाएगी नहीं? तो वो आत्मा को निश्चय हो जाता है। क्या क्या निश्चय हो जाता है, कि ये जो ब्रह्मा बाबा है ना है, ये ब्रह्मा बाबा जरूर वशिष्ठ की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? गुरु वशिष्ठ की आत्मा। मेरा पार्ट विश्वामित्र का है। कौन सा पार्ट है? मित्र के दुश्मन, विश्व आत्माओं का दुश्मन नहीं, क्या दोस्त? अभी तक 2500 साल से भले दुश्मन बन करके रहा हो, क्या दुखदाइयों का, लेकिन अब क्या बुद्धि में बैठ गया है? मैं इस संसार में विश्व पिता बन करके प्रत्यक्ष होने वाला हूँ, तो जब ये पक्का निश्चय बैठ जाता है तो वो गट्स आते हैं या नहीं आते हैं? वो गट्स आते हैं, और हिम्मत आती है ना, तो फिर वो देख लेता है प्रैक्टिकल में, तो देख लेता है कि युद्ध में ये जो वशिष्ठ ब्राह्मण है ये विजयी हो रहा है, है? और या मैं क्षत्रिय होते हुए भी, इतना बड़ा राजा होते हुए भी, कंट्रोलिंग पावर मेरे ऊपर हो, मेरे साथ होते हुए भी मैं हारता चला जा रहा हूँ इससे, तो फिर वो क्या करती है, है? क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं तपस्या को, पेनंस, पेनंस। माता जी को गुरु बना लेता हूँ कमजोरी। तो वो क्या नाम, तो वो तपस्या करना शुरू करता है, और ऐसी घोर तपस्या करता है कि बड़ी तीव्रता से तीव्र तप करके और ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। फिर वशिष्ठ जी भी खुश हो जाते हैं, भैया ले जाओ अपनी जो चीज ले रहे थे, मांग रहे थे वो तुम ले जाओ, तो गैया दे देते। तो बताया कि शिव बाप सुप्रीम सोल परम कल्याणकारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितना कल्याणकारी बन करके पार्ट बजाता है, उतना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई निराकार आत्मा नहीं है। क्या जो ऐसा अच्छा कल्याणकारी पार्ट बजाती हो। कैसा? कि जन्म जन्मांतर तो क्या, एक जन्म आकर के पार्ट बजाती है, उसमें भी कुछ मान मर्तबा नहीं लेती। लेती है सारा मान मर्तबा, किसको दे देती? अपने बच्चे। तो बच्चे ने तो सीखा हुआ, क्या क्या सीखा हुआ? अरे बाप को क्या रिटर्न करना है? अरे भूल गए, या करो, या कर लो। सन सो फादर, फादर सो सन। क्या बताया? सन सो फादर। अगर बच्चा है और बच्चा अपने को बाप का सच्चा बच्चा समझता है कि मैं सुप्रीम सोल बाप का आत्मा रूपी बच्चा हूँ, तो क्या करेगा? बाप को प्रत्यक्ष जरूर करेगा। लेकिन बाप पावरफुल या बच्चा पावर हो? बाप पावर हो। अच्छा, बाप कैसे पावर हो? उसके तो हाथ पाँव नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है। उसमें प्रवेश करके पाठ बजाता है। क्या पाठ बजाता है? है जिससे संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है। वो मुख्य पाठ बताओ। रथ को कंट्रोल करता है। अच्छा, हाथ पांव बांध देता है, पांव बांध देता है, कान में डोरी लगा करके लटकाए देता है ऊपर, है और क्या क्या बांध देता है, गर्दन लटकाए देता है। वो तो यज्ञ के आदि में लटका दी गई एक बार। अब क्या करता है? ज्ञान सुनाता है। अच्छा, तो ज्ञान और दूसरों को नहीं सुनाता है? ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में ये बुद्धि में नहीं बैठता कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल सोल कौन काम करती है जिससे ये सारा संसार चलता है। क्या वो किसी की बुद्धि में पक्का नहीं बैठता? अगर पक्का बैठ जाए 100% तो क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा? पक्का आत्मा बनेगा। जो आत्मा पक्का बनेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं देह नहीं हूँ, देह नहीं, और इंद्रियों की उपलब्धि प्राप्ति नहीं। क्या करेगा? सहज काम है, नहीं सहज काम नहीं है, है? बढ़िया बढ़िया है। उस आत्मा को लड्डू पेड़ा सामने आ जाए तो छोड़ देता है क्या? कि छोड़ देगा? है? सेक्रिफाइस करेगा। अच्छा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक है, करता होगा। अपने राम का तो बस का नहीं है या? और उसमें भी खास करके कोई माताएं हैं, बड़े प्यार से लाती हैं। गीता में तो लिखा हुआ है ना, अरे वो बीज रूप आत्माएं शास्त्रों के ऊपर विश्वास करने वाली होंगी कि नहीं होंगी? सब नहीं होंगी, दूसरे धर्म का छिलका होकर चढ़ा होगा तो नहीं होंगी। लेकिन जो पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो तो विश्वास करेंगी ना। हाँ, गीता में तो लिखा हुआ है। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति, उनको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं और कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ अर्पण करता है तो लेता है, तो बच्चा नहीं लेगा है? लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा। अरे भाई ज्यादा नहीं लेगा तो थोड़ा तो लेगा। हाँ थोड़ा लेगा, ऐसे होता है कि नहीं? हाँ इतना थोड़ा तो लेगा जो परंपरा चल पड़ी। कितनी परंपरा क्या चल पड़ी संसार में? भक्तों ने परंपरा चल रही है, भगवान के मुंह में थोड़ा सा डालेंगे और सारा खुद खा जाएंगे। हाउ हाउ बड़े भगत हुए छोटे भगत? बड़े भगत। ओम शांति।